आगे सबक देखिए भाई। फसलुन फी शिरकतिल फासिदह वला यजूजु शिरकतु फिल इहतिताबि वल इस्तियादि व मस्तादहु कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा अव इहततबहु फहुवा लहू दून साहिबिही वअला हाज़ल इश्तिराकु फी अख्ज़ि कुल्लि शैइन मुबाहिन لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل في أخذ المال المباح باطل. بھئی گزشتہ سبق میں شرکت عینان کے مسائل ذکر ہو رہے تھے بھئی. صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عند الاحناف شرکت کے اندر دونوں شریکوں کا مال ملانا ضروری نہیں ہے. امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ عقد شرکت کے اندر دونوں شریکوں کا اپنے مال کو اس طرح پر ملا دینا کہ دونوں میں سے کسی کے مال کی پہچان نہ ہو سکے کہ کون سا کس کا مال ہے. تو اس طریقے پر دونوں مالوں کو ملانا یہ ضروری ہے, یہ شرط ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک. لہذا ان کے نزدیک اگر دونوں شریکوں کے مال کی جنس الگ ہوئی, یعنی ایک کی طرف سے درہم اور دوسرے کی طرف سے دینار, یا دونوں کے مالوں کی صفت الگ الگ ہوئی, یعنی ایک کی طرف سے سفید درہم ہیں اور دوسرے کی طرف سے کالے درہم ہیں, تو اس صورت میں اگر ان کو ملا بھی دیا جائے پھر بھی ان کی پہچان ہوتی ہے, لہذا اس صورت میں بھی شرکت جائز نہیں ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو نفع ہے یہ مال کی فرع ہے, اور نفع کے اندر اس لیے شرکت آتی ہے کہ دونوں کی مال کے اندر شرکت ہوتی ہے, اور مال کے اندر شرکت تبھی آئے گی جب دونوں اپنے اپنے مال کو آپس میں ملا دیں گے. تو وہ فرماتے ہیں یہ جو نفع ہے یہ مال کی فرع ہے, اور اس عقد کا جو محل ہے وہ مال ہے, یعنی مال معقود علیہ ہے, اس پر عقد کیا ہے دونوں نے, لہذا اسی لیے اس عقد کی نسبت اس مال کی طرف کی جاتی ہے, اور اسے عقد الشرکت کہتے ہیں. ای عقد الشرکت المالی, شرکت مال والا عقد. تو یہ جو مال دونوں نے ملایا ہے اس میں شرکت ہے, تو عقد کی نسبت بھی اسی کی طرف کی جاتی ہے اور اس کو عقد الشرکت کہا جاتا ہے. اور اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس عقد شرکت کے اندر رأس المال کا متعین ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کے ذریعے جب سمن کی ادائیگی کی جائے گی تو مبیعے سے پھر آگے جو نفع حاصل ہوگا اس کے اندر بھی دونوں کی شرکت ہوگی, کیونکہ جب ادائیگی مال مشترکہ سے کی گئی ہے تو نفع میں بھی دونوں شریک ہوں گے. اس پر اشکال ہوتا تھا کہ مضاربت کے اندر بھی تو نفع کے اندر دونوں کی شرکت ہوتی ہے, حالانکہ وہاں پر تو صرف رب المال کی طرف سے مال ہے, مضارب کی طرف سے تو کوئی مال نہیں. تو اس کا بھی جواب دیا کہ یہ جو عقد مضاربت ہے یہ شرکت ہے ہی نہیں, یہاں پر جو مضارب جو ہے وہ نفع کا مستحق ہوتا ہے, وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے, تو مضاربت کے اندر تو شرکت نہیں ہے لیکن شرکت عینان میں تو شرکت ہے بھائی. چنانچہ صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بڑا ضابطہ ہے کہ جو نفع ہے یہ مال کی فرع ہے, اس لیے دونوں مالوں کا ایک جنس کا ہونا بھی ضروری, دونوں مالوں کا ملانا بھی ضروری, اور نیز نفع کے اندر کمی بیشی بھی جائز نہیں, جتنا جس کا مال ہوگا اتنا ہی نفع میں اس کا حصہ ہوگا. اور نیز اسی لیے وہ فرماتے ہیں شرکت الصنائع جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مال ہی نہیں ہوتا, اور نفع تو فرع ہے مال کی, تو لہذا ان کے نزدیک شرکت الصنائع بھی جائز نہیں. جبکہ ہمارے نزدیک یہ جو نفع ہے یہ مال کی فرع نہیں بلکہ یہ عقد کی فرع ہے, یہ جو دونوں شریکوں نے آپس میں عقد شرکت کیا ہے, نفع اس عقد کی فرع ہے کیونکہ اس عقد کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے وکیل بن گئے, تو دونوں شریکوں میں سے جو بھی کوئی تصرف کرتا ہے بیع وغیرہ والا تو اس نصف تصرف کے اندر وہ اصیل ہے, اپنی طرف سے تصرف کر رہا ہے, اور نصف تصرف میں وہ دوسرے کی طرف سے وکیل ہے, تو لہذا اس کی وجہ سے نفع کے اندر شرکت آ جائے گی. تو معلوم ہوا ہمارے نزدیک یہ جو نفع ہے یہ عقد کی فرع ہے مال کی فرع نہیں, और बाकी इमाम शाफई और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इसाकत की निस्बत माल की तरफ की जाती है और इसको अकद शिरकत कहते हैं। तो उसका हम जवाब देते हैं कि ये जो अकद है इस अकद का नाम ही शिरकत है, तो इस अकद को माल में शिरकत की वजह से अकद शिरकत नहीं कहते बल्कि इस अकद का नाम ही शिरकत है, लिहाजा इस अकद के अंदर शिरकत वाला माना होना चाहिए। और शिरकत वाला माना यहां मौजूद है कि जो भी दोनों में से कोई तसरुफ करता है दूसरा उसमें उसके साथ शरीक होता है भाई। लिहाजा जब इस अकद का नाम शिरकत है तो इसमें माल की शिरकत जरूरी नहीं। और नीज दूसरी दलील अहनाफ की यह जिक्र की साहिब हिदाया ने कि ये जो दिरहम और दीनार हैं ये तायीन से भी मुतायन नहीं होते, यहां तक कि दोनों शरीक किसी के साथ बैउ शिरा करें तो उसमें ये ही माल शिरकत देना मुतायन नहीं है बल्कि इसमें और माल भी दिया जा सकता है। तो मालूम हुआ ऐन रासुल माल की वजह से नफा हासिल नहीं होता बल्कि यह नफा तसरुफ की वजह से हासिल होता है। तो जब माल को मिलाए बगैर ही तसर्रुफ के अंदर शिरकत पाई गई तो इस तसर्रुफ से जो नफा हासिल होगा उसके अंदर भी शिरकत पाई गई बगैर माल को मिलाए हुए ही, तो ये शिरकत अक़्द मुजारबत की तरह हो गई। जैसे अक़्द मुजारबत के अंदर माल मिलाए बगैर ही मुजारिब जो है वो नफे का मुस्तहिक होता है, तो यहां अक़्द शिरकत में भी दोनों माल न मिलाए फिर भी दोनों नफे के मुस्तहिक होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के वकील हैं भाई। लिहाजा हमारे नजदीक जब दोनों शरीकों का आपस में माल को मिलाना जरूरी नहीं तो माल का एक जिंस का होना भी जरूरी नहीं और नीज नफे में बराबरी भी जरूरी नहीं है क्योंकि नफा माल की फरा नहीं है और नीज नफे का माल के बराबर होना भी जरूरी नहीं है क्योंकि नफा माल की फरा नहीं है और नीज शिरकत उस सनाए भी हमारे नजदीक जायज हो गई क्योंकि हमारे नजदीक नफा जो है वो माल की फरा नहीं है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर दो आदमी आपस में अक़्द शिरकत कर लें और उसके अंदर एक के लिए मुअय्यन दराहिम की शर्त लगा दें कि मसलन नफे में से 20 दिरहम जैद के हुआ करेंगे और बाकी नफे को आधा आधा तकसीम करेंगे, तो साहिब हिदाया ने बतलाया कि यह भी जायज नहीं क्योंकि किसी के लिए मुअय्यन दराहिम की शर्त लगाना यह तो अक़्द शिरकत को खत्म कर देता है, इसकी वजह से तो शिरकत ही खत्म हो गई। शिरकत का मकसद जो था वह नफे के अंदर शिरकत था, तो हो सकता है सारा नफा ही 20 दिरहम हो तो वह सारा तो जैद ले जाएगा, तो नफे के अंदर तो शिरकत न पाई गई, लिहाजा किसी के लिए मुअय्यन दिरहमों की शर्त लगाना सही नहीं। ये इसी तरह है जैसे मुजारात के अंदर भाई, खेती बाड़ी के अंदर दो आदमी आपस में शिरकत कर लेते हैं और उसके अंदर आपस में तय कर लेते हैं, मसलन एक शरीक कहता है कि 100 मन गंदुम जो अव्वलन हासिल होगी वो मेरी होगी और बाकी गंदुम के अंदर हम दोनों शरीक होंगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है इसलिए क्योंकि हो सकता है सारी पैदावार ही 100 मन गंदुम हो, वो तो फिर एक शरीक ले जाएगा, उसमें तो फिर शिरकत ही खत्म हो गई भाई। तो मालूम है किसी के लिए मुअय्यन दिरहमों या मुअय्यन पैदावार की शर्त लगाना यह अक़्द शिरकत को बातिल कर देता है, लिहाजा यह शर्त लगाना सही नहीं है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया था कि इन दोनों शरीकों को किस किस तसरुफ का हक हासिल होगा, तो बतलाए ये दोनों बतौर बिजात के भी अपना माल किसी को दे सकते हैं। मैंने बतलाया था बिजात इसे कहते हैं कि एक शख्स किसी ताजिर को अपना माल दे देता है कि इस माल को अपने साथ तिजारत के अंदर लगाओ बतौर सरमाए के और इस माल से जो नफा हासिल होगा वह सारा इस माल वाले ही का होगा, तो इसको क्या कहते हैं बिजात। तो इसके अंदर देखो वो जो ताजिर है वो इस माल वाले के लिए मुफ्त में काम कर रहा है और इसको इसके माल का पूरा नफा अदा कर रहा है, तो लिहाजा ये जायज है भाई। और इसी तरह ये दोनों शरीक किसी के पास माल बतौर अमानत के रखवाना चाहते हो तो ये भी उनके लिए जायज है। इसी तरह अगर दोनों शरीक जो हैं वो किसी को मुजारबत के तौर पर माल शिरकत देना चाहते हैं तो ये भी उनके लिए जायज है। इसी तरह ये दोनों शरीक बैउ शिरा में किसी को वकील बनाते हैं तो ये भी उनके लिए जायज है भाई। और नीज दोनों का कब्जा जो होगा माल शिरकत पर वो अमानत वाला कब्जा होगा, लिहाजा अगर किसी के पास माल शिरकत हलाक हो गया तो उस पर जमान नहीं आएगा भाई। और फिर उसके बाद हमने शिरकतु सनाएअ के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बतलाया था शिरकतु सनाएअ भाई, सनाएअ जमा है सनातुन की और सनात कारीगरी को कहते हैं। तो दो कारीगर या दो पेशे वाले आदमी आपस में अकदे शिरकत कर लेते हैं कि हम दोनों को जो भी माल मिलेगा हम उसको कबूल करेंगे और दोनों उस काम को किया करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को किया करेंगे और नफे को आपस में तकसीम किया करेंगे, तो इसको शिरकतु सनाया कहते हैं। और इसी तरह इसका नाम शिरकतु तकबुल भी है कि दोनों अमल को कबूल करते हैं, और नीज इसी तरह इस शिरकत का नाम शिरकतुल अमाल भी है कि दोनों अमल करते हैं, और इसी तरह इस शिरकत का नाम शिरकतुल अबदान भी है कि दोनों बदन अमल के अंदर शरीक होते हैं। मसलन दो दर्जियों ने आपस में आकद कर लिया या दो धोबियों ने आपस में आकद कर लिया, बल्कि दोनों का एक पेशे वाला होना भी जरूरी नहीं, एक दर्जी है और दूसरा धोबी है, या एक धोबी है और एक रंगरेज है, ये आपस में आकदे शिरकत करते हैं कि दोनों लोगों से काम लेंगे, यानी धोबी जो है वो धोबियों वाला काम भी कबूल करेगा और दर्जियों वाला भी, धोबियों वाला काम खुद करेगा और दर्जियों वाला काम अपने शरीक के सुपुर्द करेगा, और वो दूसरा शरीक जो दर्जी है वो दर्जियों वाला काम भी कबूल करेगा और अपने शरीक के लिए धोबियों वाला काम भी कबूल करेगा, और वो धोबियों वाला काम अपने शरीक के सुपुर्द करेगा, और फिर नफे के अंदर दोनों आपस में शरीक होंगे। तो बतलाया कि ये जो शिरकतु सनाया है ये हमारे नजदीक जायज है भाई, जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह के नजदीक ये जायज नहीं है भाई। और नीज साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि हमारे नजदीक यह भी जायज है कि दोनों अमल के अंदर निसफ निसफ की शर्त लगा दें कि आधा काम एक को करना पड़ेगा और आधा काम दूसरे को, यानी दोनों में से हर एक जिस काम को भी कबूल करेगा वो दोनों पर आधा आधा होगा, आधा काम एक को करना पड़ेगा और आधा काम दूसरे को। और नफे के अंदर वो कमी बेशी की शर्त लगा देते हैं, मसलन काम तो करना है 50-50%, लेकिन एक का नफा जो है वो 70% होगा और दूसरे का नफा सिर्फ 30% होगा, तो ये भी हमारे नजदीक जायज है। और बतलाया था कि इस्तेहसानन जायज है, कियास तो ये तकाजा करता है कि ये जायज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमान अमल के बकदर है, दोनों में से हर एक निस्फ अमल का जामिन हुआ है, तो जमान अमल के बकदर है, तो इस अमल से जायद नफे की शर्त लगाना ये तो रिफ मालम युजमन की खराबी इसमें लाजिम आती है। याद रखो, याद रखो, कोई शख्स नफे का मुस्तहिक तभी बनता है जब एक चीज का जमान भी उस पर आता हो, अगर एक चीज का जमान एक आदमी पर नहीं आता तो वह उस चीज का नफा भी नहीं ले सकता। तो लिहाजा यहां पर भी दोनों पर निसफ निसफ काम का जमान आ रहा है, तो लिहाजा कयास ये तकाजा करता है कि नफे के अंदर भी दोनों का निसफ निसफ हिस्सा होना चाहिए। अगर ज्यादा की शर्त लगाएंगे तो रिफ मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी, और रिफ मालम युजमन तो जायज नहीं, जैसे शिरकत वजूह के अंदर भाई, शिरकत वजूह के अंदर भाई मैंने आपको बतलाया था कि शिरकत वजूह यह है कि दो आदमी हैं, उनके पास माल तो नहीं है लेकिन ताजिरों का उन पर एतमाद है, ताजिर उनकी इज्जत करते हैं, तो ये आपस में अक्द शिरकत कर लेते हैं कि हम दोनों उधार माल लिया करेंगे ताजिरों से और फिर आगे बेचकर जो नफा कमाया करेंगे उसको आपस में तकसीम कर लिया करेंगे, तो इसको शिरकत वजूह कहते हैं। और याद रखो शिरकत वजूह के अंदर नफा बिकदरी जमान आएगा, यानी दोनों जो ताजिरों से उधार माल लेते हैं, अगर आपस में यह तय किया कि ये जो भी माल हम उधार लेंगे आधा आधा जमान दोनों पर आएगा, अगर यह माल जाया हुआ तो आधा आधा जमान दोनों पर आएगा, तो नफा भी आधा आधा ही आपस में तकसीम करेंगे। और अगर आपस में यह तय किया कि हम जो भी माल उधार लेंगे उसमें से दो हिस्सों का जामीन एक शरीक होगा और एक हिस्से का जामीन दूसरा शरीक होगा, यानी तीन हिस्से कर दिए जमान के, तो फिर इस सूरत में नफा भी इसी तरह होगा, जिसका हिस्सा जमान के अंदर दुगना है नफे के अंदर भी उसका हिस्सा दुगना होगा भाई। तो मालूम हुआ शिरकत वजूह के अंदर जितना जमान उसी के बकदर नफा भी होगा, तो वहां जमान से कम या ज्यादा नफे की शर्त लगाना सही नहीं है। तो बात चल रही थी कि ये शिरकतुल अमाल जो है, ये शिरकतुल सनाया जो है, इसके अंदर दोनों आपस में अमल को तो आधा आधा तय कर लेते हैं लेकिन नफे के अंदर कमी बेशी की शर्त लगा देते हैं, तो कियास ये तकाजा करता है ये जायज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में रिफ मालम युजमन की खराबी लाजिम आती है, जैसे शिरकत वजूह के अंदर है, तो यह शिरकतुल सनाया भी किसकी तरह हो गया, शिरकतुल वजूह की तरह, जैसे उसके अंदर जमान से जायद नफे की शर्त लगाना सही नहीं, तो शिरकतु सनाया में भी जमान से जायद नफे की शर्त लगाना सही नहीं होना चाहिए। लेकिन साहिब हिदायत ने बतलाया कि इस्तेहसानन यह जायज है, वजह यह कि यह जो शिरकतु सनाया के अंदर माल आ रहा है यह नफा है ही नहीं, नफा तो उसे कहते हैं कि असल की और नफे की जिंस एक ही हो, असल भी माल है और नफा भी माल है, तो इसको नफा कहते हैं। लेकिन अगर असल की जिंस और है और नफे की जिंस और है तो इसको नफा नहीं कहते। जैसे यहां पर, यहां असल माल नहीं है क्योंकि दोनों अमल कर रहे हैं, दोनों ने कोई माल नहीं आपस में मिलाया, तो यहां असल है अमल और नफा जो है वो है माल, तो लिहाजा ये नफा है ही नहीं, ये दरअसल उजरत है भाई। और उजरत में तो कमी बेशी हो सकती है, उजरत की कीमत तो जो आपस में तय कर ली जाए उतनी मुकर्रर होती है। जैसे एक मजदूर आपके पास आता है, आप उसे काम दिखाते हैं कि ये काम आपको करना है, तो वो आपसे कहता है मैं 1500 रुपए इस काम के लूंगा। आप दूसरा मजदूर लाते हैं तो वो कहता है मैं यही काम आपको 1000 रुपए में कर दूंगा। तो देखो दोनों में से हर एक अपने काम की कीमत लगा रहा है, तो आप जिसके साथ राजी हो जाएंगे गोया वो उसके अमल की कीमत हो गई। तो यहां पर भी दोनों शरीक अमल करेंगे और काम करेंगे और दोनों ने अपने अपने अमल की जो कीमत लगा दी, जैद ने अपने अमल की कीमत 70% लगाई है और अमर ने अपने अमल की कीमत 30% लगाई है, तो जब बाहमी रजामंदी से यह तय हो गया तो लिहाजा नफे की कमी बेशी तय करना हराम नहीं होगा भाई। दोनों आपस में बराबर अमल की शर्त लगाएं और नफे की कमी बेशी की शर्त लगाएं, यह हराम नहीं होगा। जबकि इसके मुकाबले में शिरकत वजूह जो है, शिरकत वजूह के अंदर तो दोनों उधार माल लाते हैं, तो गोया जो माल वो लाए हैं वो भी है, वो भी माल है, और जो नफा आया वो भी माल है, तो वहां जिन से एक है लिहाजा वहां तो नफा होता है, लिहाजा वहां तो नफा जमान के बकदर होना चाहिए, वरना रिफ मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी। जबकि यहां पर तो नफा है ही नहीं, बल्कि ये तो अमल की उजरत है भाई। बात समझ में आ गई। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया था कि दोनों शरीकों में से हर एक जिस अमल को भी कबूल कर लेगा दूसरे पर भी वह अमल लाजिम हो जाएगा, उसे करना पड़ेगा। और नीज दोनों में से हर एक उजरत का मुतालबा भी कर सकता है। मसलन जैद और अमर दोनों दर्जी हैं, दोनों ने आपस में अक़्द शिरकत कर लिया, यानी शिरकत उस सनाए भाई, और फिर जैद के पास एक आदमी कोई कपड़े सीने के लिए लाया, तो ये अमल सिर्फ जैद पर नहीं लाजिम बल्कि अमर पर भी लाजिम है, वो अमर से भी मुतालबा कर सकता है और नीस उजरत का मुतालबा भी दोनों कर सकते हैं। काम जैद ने लिया है लेकिन उजरत का मुतालबा अमर भी कर सकता है। मालूम हुआ काम के अंदर और उजरत के मुतालबे में दोनों बराबर हैं भाई। और इसी तरह उजरत देने वाला इन दोनों में से जिसको भी उजरत दे दे वो बरी हो जाएगा, उजरत अदा हो जाएगी। काम उसने जैद को दिया था और उजरत वो अमर को देता है तो भी उसका जिम्मा बरी हो गया, उसने उजरत अदा कर दी भाई। और फिर ये भी बतलाया था कि ये जो अमल का दोनों से मुतालबा किया जा सकता है और ये जो उजरत का दोनों मुतालबा कर सकते हैं, ये शिरकत मुफावजा के अंदर तो ये बात जाहिर है लेकिन शिरकत ऐनान में ये इस्तेहसानन है भाई। मैंने आपको बतलाया था जहां बाबू शिरकत हमने शुरू किया था वहां साहिब कुदूरी ने आपको बतलाया था कि ये जो शिरकत है ये चार किस्म पर है, शिरकत मुफावजा, शिरकत ऐनान, शिरकत सनाए और शिरकत वजूह भाई। लेकिन बाज उलमा दूसरी तकसीम करते हैं और वो ज्यादा बेहतर है भाई। वो फरमाते हैं कि शिरकत जो है या तो माल में होगी या अमल में होगी या वजूह के अंदर होगी। शिरकत जो है अमल में, शिरकत या माल में होगी या अमल में होगी या वजूह के अंदर होगी, और फिर इन तीनों में से हर एक या मुफावजा होगी या ऐनान। मुफावजा के अंदर बराबरी होती है और ऐनान के अंदर बराबरी नहीं होती, तो लिहाजा शिरकत सनाए के अंदर अगर हर चीज की बराबरी की शर्त लगा दी कि दोनों जो हैं अमल के अंदर भी बराबर होंगे, नफे और नुकसान में भी बराबर होंगे, मालूम हुआ ये शिरकत सनाए जो है ये शिरकत मुफावजा है। तो जब हर चीज में बराबरी है तो मालूम हुआ दोनों से अमल का मुतालबा भी हो सकता है और नीज दोनों उजरत का मुतालबा भी कर सकते हैं। तो दोनों से अमल का मुतालबा होना और दोनों का उजरत का मुतालबा करना यह मुफावजा में तो है, लेकिन ऐनान के अंदर तो दोनों शरीक एक दूसरे के वकील होते हैं, कफील नहीं होते, लेकिन यहां इस्तेहसानन जो है वो कफालत साबित हो जाएगी। वजह यह कि यहां शिरकत सनाए के अंदर दोनों शरीकों में से जो भी किसी अमल को कबूल करता है दूसरे पर भी उसका जमान आता है, दूसरे से भी उसका मुतालबा हो सकता है, इसीलिए तो दूसरा उजरत का भी मुस्तहिक बनता है। लिहाजा ये जो शिरकत सनाए जो है ऐनान के तरीके पर हो ये भी मुफावजा के कायम मकाम है, यानी इसमें बराबरी होगी कि दोनों से अमल का भी मुतालबा हो सकता है और दोनों उजरत का भी मुतालबा कर सकते हैं। अलबत्ता बाकी चीजों के अंदर यह शिरकत ऐनान जो है यह मुफावजा की तरह नहीं है। मुफावजा में तो एक शरीक पर जो दैन लाजिम आता था वह दूसरे पर भी लाजिम हो जाता था, लेकिन यहां शिरकत सनाए के अंदर जो शिरकत ऐनान है वह शिरकत मुफावजा के दर्जे में है, दो चीजों में, एक अमल के जमान में और दूसरा उजरत के मुतालबे में। बाकी दैन वगैरह किसी एक पर लाजिम होता है तो वह दूसरे पर लाजिम नहीं होगा, यानी बाकी चीजों में यह शिरकत ऐनान शिरकत मुफावजा की तरह नहीं है इस शिरकत सनाया के अंदर भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने शिरकत वजूह के बारे में बतलाया था कि शिरकत वजूह इसे कहते हैं कि दो आदमी आपस में अकद कर लेते हैं, उधार माल लेते हैं ताजिरों से और फिर उसको आगे बेचते हैं और नफे के अंदर दोनों शरीक होते हैं, इसको शिरकत वजूह कहते हैं। और इसको शिरकत वजूह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां ताजिरों से उधार माल लिया जाता है और वजूह जो है वजाहत से है और वजाहत इज्जत को कहते हैं, और ताजिर उधार उसी को माल देंगे जिनकी ताजिरों के यहां इज्जत होगी, ताजिरों का जिन पर एतमाद होगा, हर एक को तो वह उधार माल नहीं देंगे भाई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि शिरकत वजूह के अंदर दोनों शरीक जो भी चीज उधार खरीदते हैं ताजिरों से, इसके अंदर दोनों एक दूसरे के वकील होते हैं और दोनों पर जमान आता है, और अलबत्ता इसके अंदर जितना जितना जमान दोनों पर आएगा नफे के अंदर भी उतना ही हिस्सा होगा, नफे के अंदर कमी बेशी जायज नहीं है भाई। और अगर नफे के अंदर कमी बेशी की शर्त भी लगा दी तो वो शर्त बातिल है, माल के बकदर ही दोनों नफे के मुस्तहिक होंगे। मसलन जैद और अमर ने अक़्द शिरकत कर लिया कि हम ताजिरों से उधार माल लेंगे और हर एक पर 50% जमान आएगा, अगर नुकसान हुआ तो 50% जमान जैद पर आएगा और 50% जमान अमर पर आएगा, तो नफे के अंदर भी इसी तरह दोनों का हिस्सा 50-50% होगा। अगर नफे के अंदर ज्यादती की शर्त लगा दी, मसलन जैद कहता है कि मैं 70% नफा लूंगा, तो यह शर्त बातिल है, नफे के अंदर भी दोनों का हिस्सा जमान के बकदर ही होगा, यानी 50-50%। बात समझ में आ गई। और वजह यह है कि नफे में बराबरी इसलिए आएगी क्योंकि कोई शख्स नफे का जो मुस्तहिक बनता है या तो वो माल की वजह से बनता है या अमल की वजह से या जमान की वजह से। जैसे मुजारबत के अंदर रब्बुल माल जो है वो नफे का मुस्तहिक है अपने माल की वजह से और मुजारिब नफे का मुस्तहिक है अपने अमल की वजह से, और बाज औकात कोई आदमी नफे का मुस्तहिक होता है जमान की वजह से। जैसे कोई कारीगर है उसके पास और लोग भी काम सीखने के लिए आते हैं तो वह कारीगर लोगों से काम लेता है और अपने पास सीखने वाले शागिर्दों को वो काम हवाले करता है निसफ नफे के बदले, निसफ उस्ताद खुद रख लेता है और निसफ उन काम करने वालों को दे देता है। तो यहां पर भी जो उस्ताद निसफ नफे का मुस्तहिक हो रहा है वो जमान की वजह से है क्योंकि इस काम का जमान उस्ताज पर है भाई। बात समझ में आ गई। मालूम हुआ नफे का मुस्तहिक इंसान तीन चीजों की वजह से बनता है, या तो माल की वजह से या अमल की वजह से या जमान की वजह से, इनके अलावा किसी और वजह से इंसान नफे का मुस्तहिक नहीं बनता। और शिरकत वजूह जो है उसके अंदर जो इंसान नफे का मुस्तहिक बनता है वो जमान की वजह से बनता है क्योंकि वो ताजिरों से उधार माल लाया है, उस पर जमान आ रहा है, तो लिहाजा यहां पर नफे का जमान के बकदर होना जरूरी है वरना रिबह मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी भाई। और रिबह मालम युजमन ये तो सिर्फ मुजारबत के अंदर जायज है, मुजारिब नफे के अंदर हिस्सा लेता है, अगरचे नुकसान हो जाए तो जमान मुजारिब पर नहीं आता, सारा नुकसान रब्बुल माल पर आता है। तो रिबह मालम युजमन सिर्फ मुजारबत के अंदर जायज है भाई, और जबकि शिरकत वजूह जो है वो मुजारबत के माना में नहीं है, इसलिए क्योंकि शिरकत वजूह में दोनों शरीक काम करेंगे और अगर नुकसान हुआ तो जमान भी दोनों पर आएगा, जबकि मुजारबत के अंदर सिर्फ मुजारिब काम करता है और अगर नुकसान हो तो नुकसान सिर्फ रबुल माल पर आता है। तो लिहाजा ये जो शिरकत वजूह है ये मुजारबत की तरह नहीं है। मुजारबत के अंदर तो रिबह मालम युजमन जायज है, लेकिन शिरकत वजूह के अंदर रिबह मालम युजमन जायज नहीं क्योंकि यह किसी भी एतबार से मुजारबत की तरह नहीं है। मैंने आपको बताया किस तरह मुजारबत की तरह नहीं है कि शिरकत वजूह में दोनों को अमल करना पड़ता है और अगर नुकसान भी हुआ तो दोनों पर आएगा, जबकि मुजारबत में एक को काम करना पड़ता है और नुकसान भी हो तो एक ही पर आता है, दूसरे पर नुकसान नहीं आता। तो शिरकत वजूह किसी भी एतबार से मुजारबत की तरह नहीं, लिहाजा मुजारबत की तरह यहां रिबह हुक्म आलम युजमन जायज नहीं होगा, जबकि शिरकत ऐनान जो है वह मुजारबत की तरह है। बाई लिहाज कि शिरकत ऐनान के अंदर दोनों शरीक एक दूसरे के माल में अमल करते हैं, दोनों शरीकों ने माल मिला दिया, मसलन जैद और अमर ने शिरकत ऐनान कर लिया, दोनों ने अपना माल मिला दिया, तो जैद भी तिजारत कर रहा है इस माल मुश्तरका में और अमर भी इस माल मुश्तरका में तिजारत कर रहा है, तो जैद इस माल मुश्तरका में अमल कर रहा है और उसका माल भी है, तो उस माल के अंदर जैद अमल कर रहा है असील होने के एतबार से, और दूसरे शरीक के माल में भी ही इस काम कर रहा है उसकी तरफ से वकील होने की वजह से, तो शिरकत ऐनान में दोनों शरीक जो हैं वो एक दूसरे के माल में अमल करते हैं वकील होने की वजह से। जैसे मुजारबत के अंदर माल रबुल माल का होता है और अमल जो है वो मुजारिब करता है, तो मुजारिब दूसरे के माल में अमल कर रहा है उसकी तरफ से वकील होने की वजह से, तो मुजारबत में भी एक शख्स दूसरे शख्स के माल में अमल करता है, इसी तरह शिरकत ऐनान में भी दोनों शरीक एक दूसरे के माल में अमल करते हैं, तो यह शिरकत ऐनान मुजारबत की तरह हुई, और मुजारबत में तो रिफ़ो माल अम्युज़मन जायज है, तो शिरकत ऐनान में भी रिफ़ो माल अम्युज़मन जायज होगा। भाई बात समझ में आ गई। यहां एक एतराज होता है, एतराज यह कि आपने हमें बताया कि मुजारबत के अंदर रिफ मालम युजमन लाजिम आता है और रिफ मालम युजमन तो जायज ही नहीं, लेकिन मुजारबत में खिलाफुल कियास रिफ मालम युजमन जायज है क्योंकि हादीस मुबारका से इसका सबूत है। भाई तो जो चीज खिलाफुल कियास हो उस पर तो दूसरी चीज को कियास नहीं किया जा सकता। भाई कियास तो उस चीज पर किया जाता है जो खुद अकल के मुताबिक हो, जब एक चीज अकल के मुताबिक है तो दूसरी चीज को भी उस पर कियास कर लिया जाता है, और एक चीज हमारी अकल में ही नहीं आ रही, हमें उसकी वजह ही समझ में नहीं आ रही, तो उसके साथ दूसरी चीज को कैसे मिलाया जा सकता है। तो मुजारबत के अंदर रिफ मालम युजमन जायज है खिलाफुल कियास। भाई तो जब मुजारबत खुद खिलाफुल कियास है तो ऐनान को मुजारबत पर कियास करते हुए ऐनान के अंदर भी रिफ मालम युजमन जायज करार नहीं दिया जा सकता, हालांकि आप फरमा रहे हैं कि ऐनान को भी मुजारबत वाला हुक्म दे दिया गया। जैसे मुजारबत में रिफ मालम युजमन जायज है, इसी तरह ऐनान में भी रिफ मालम युजमन जायज होगा। तो जवाब याद रखना, जवाब याद रखना कि हम ऐनान को मिला रहे हैं मुजारबत के साथ, यानी ऐनान को वही हुक्म दे रहे हैं जो मुजारबत का है, तो इसके लिए जरूरी है कि मुजारबत जो है उसको भी खिलाफुल कियास करार न दिया जाए। लिहाजा हम यूं कहेंगे, इधर देखिए कि भाई यहां मुजारबत को भी कियास के मुताबिक करार दिया जाएगा, फिर ही ऐनान को मुजारबत वाला हुक्म दिया जा सकता है, और वो इस तरह कि मुजारबत के अंदर माल तो रब्बुल माल का है और नफे का मुस्ताहिक मुजारिब भी बन रहा है, हालांकि उसका कोई माल नहीं है लेकिन फिर भी वह नफे का मुस्ताहिक बन रहा है, वो दरअसल अपने अमल की वजह से नफे का मुस्ताहिक बन रहा है, और जब अपने अमल की वजह से नफे का मुस्ताहिक बन रहा है तो इस एतबार से मुजारबत खिलाफुल कियास नहीं बल्कि कियास के मुताबिक है। भाई क्योंकि कोई शख्स अमल करे तो उसको उजरत दी जाती है। भाई जैसे इजारे के अंदर है, भाई आप एक मजदूर को लाते हैं वो आपके लिए अमल करता है तो आप उसको उसकी उजरत देते हैं, लिहाजा मुजारबत के साथ ऐनान उसी सूरत में मिलाया जा सकता है जब मुजारबत को भी कियास के मुताबिक करार दे दिया जाए, और मुजारबत कियास के मुताबिक है बाई लिहाज कि मुजारबत के अंदर मुजारिब जो नफे का मुस्तहिक बन रहा है वह अपने अमल की वजह से बन रहा है, तो जब अपने अमल की वजह से मुजारिब नफे का मुस्ताहिक बन रहा है तो मुजारबत खिलाफुल कियास न रही, कियास के मुताबिक हो गई, जब ये कियास के मुताबिक हुई तो इस पर ऐनान को कियास करना सही होगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन फी शिरकतिल फासिदा वला यजूजु शिरकतु फिल इहतिताबि वल इस्तियादि वमस्तादहु कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा अव इहततबहु फहुवा लहू दून साहिबिही। भाई अब शिरकत फासिदा का बयान आ गया। साहिबे हिदाया शिरकत फासिदा के अहकाम बयान करेंगे। मसलन एक ऐसी चीज है कि उसके अंदर शिरकत जायज ही नहीं है लेकिन दो आदमी उसमें अक़्द-ए-शिरकत कर लेते हैं तो उसका क्या हुक्म है, या कोई ऐसी चीज है कि उसमें शिरकत तो जायज है लेकिन दोनों ने उसके अंदर कोई ऐसी शर्त लगा दी जिसकी वजह से वो शिरकत फासिद हो गई, तो फिर उसका क्या हुक्म है? तो साहिबे हिदायत वो तफसील इस फसल में बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं फसलुन फी शिरकतिल फासिदती, ये फसल है शिरकत फासिदा के बयान में। वला यजूजु शिरकतु फिल इहतिताबी वल इस्तियाद। इहतिताब भाई, इहतिताब का माना है लकड़ियां लाना, लकड़ियां इकट्ठी करना, जंगल से लकड़ियां लाना जलाने के लिए, इसको क्या कहते हैं? इहतिताब भाई। और इस्तियाद का माना है शिकार करना भाई। अब याद रखो जंगल की लकड़ियां मुबाह हैं सबके लिए भाई, जो भी उन लकड़ियों को ले आएगा वो उनका मालिक बन जाएगा। इसी तरह शिकार करना भी हर एक के लिए मुबाह है, जो भी शिकार को पकड़ लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। और याद रखना मुबाह चीजों के अंदर शिरकत जायज नहीं है, मुबाह चीजों में शिरकत जायज नहीं है। तो कहते हैं वला यजूजु शिरकतु फिल इहतिताबी वल इस्तियादी, और जायज नहीं है शिरकत लकड़ियां इकट्ठी करने में, वल इस्तियादी और शिकार करने में। वमस्तादहु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा, और वो जो दोनों में से हर एक ने शिकार किया, अविहततबहु या वो लकड़ियां जो दोनों में से हर एक ने इकट्ठी की, फहुवा लहू तो वो उसी की हैं, दून साहिबिही न कि उसके साथी की। दो आदमियों ने आपस में आपने शिरकत किया था कि भाई जंगल से जो भी लकड़ियां तुम लाओगे आधी तुम्हारी होंगी आधी मेरी, और मैं भी जंगल से जो लकड़ियां लाऊंगा आधी मेरी होंगी और आधी तुम्हारी होंगी। तो कहते हैं नहीं, ये अपने शिरकत जायज ही नहीं है, लिहाजा जो भी लकड़ियां लाएगा वो उसी की होंगी, उसके शरीक का उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। ये माना है कि वह मस्तादहु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा, और वो जो दोनों में से हर एक शिकार कर ले, अविहतता बहु या दोनों में से हर एक जो लकड़ियां ले आए, फहुआ लहू तो वो उसी की हैं, दून साहिबी ही न कि उसके साथी की। वह अला हादल इश्तिरा कुफी अखदी कुल्ली शय इम मुबाहिन, और इसी पर है हर मुबाह चीज के लेने में इश्तिराक, यानी हर मुबाह चीज के लेने में जो भी इश्तिराक किया जाए, जो भी आकद किया जाए वो भी इसी पर है, यानी उसका भी यही हुक्म है, यानी वो जायज नहीं है। मसलन दो आदमी आपस में आकद शिरकत कर लेते हैं कि हम दोनों पहाड़ से पत्थर लाएंगे, मैं भी जो पत्थर लाया उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा, और दूसरा शरीक भी अगर पत्थर लाया तो उसमें आधा हिस्सा उसका होगा और आधा हिस्सा उसके शरीक का होगा, या दोनों आपस में आकद शिरकत कर लेते हैं कि हम दोनों पहाड़ से मिट्टी लाएंगे और जो भी पहाड़ से मिट्टी लाएगा तो दूसरे का भी उसके अंदर हिस्सा होगा। तो आपको साहिबे हिदायत ने बतला दिया कि मुबाह चीज के लेने में इश्तिराक जायज नहीं, जो वो मिट्टी या पत्थर लाएगा वही उसका मालिक है भाई। तो कहते हैं वाला हादल इश्तिराक फी अख्दी कुल्ली शय इम मुबाहिन, और इसी पर है इश्तिराक हर मुबाह चीज के लेने में। ले अन्न शिरकत मुतजम्मीनतुम मानल वकालती, इसलिए क्योंकि शिरकत जो है वो मुतजम्मीन होती है वकालत के माना को, शिरकत के अंदर वकालत वाला माना होता है, दोनों शरीक एक दूसरे के वकील होते हैं, और मुबाह चीज के अंदर दूसरे को वकील बनाना जायज नहीं। जब वकील बनाना ही जायज नहीं तो शिरकत की तो बुनियाद ही वकालत पर थी, लिहाजा शिरकत भी जायज नहीं। तो कहते हैं अन्न शिरकत मुतजम्मीनतुम मानल वकालती, इसलिए क्योंकि ये शिरकत जो है ये वकालत के माना को मुतजम्मीन है, यानी इसके जिमन में इसके अंदर वकालत वाला माना होता है। व तौकील फी अख्ज़िल मालिल मुबाही बातिलुन, और वकील बनाना, तौकील का क्या माना है? दूसरे को वकील बनाना। व तौकील फी अख्ज़िल मालिल मुबाही बातिलुन, और माल मुबाह के लेने में दूसरे को वकील बनाना बातिल है। तवज्जो है, अब दावा यह है कि मुबाह चीज के लेने में दूसरे को वकील बनाना बातिल है। इस पर दो दलीलें जिक्र करेंगे साहिबे हिदाया। एक तो यह कि मुवक्किल का दूसरे को मुबाह चीज के लाने का हुक्म देना यह हुक्म ही सही नहीं है। तवज्जो है, मुवक्किल वो जो वकील बनाने वाला है, मुवक्किल का वकील को हुक्म देना कि मुबाह चीज लेकर आओ मेरे लिए, ये हुक्म सही ही नहीं, क्योंकि वकील उस चीज के अंदर बनाया जाता है जिसका इंसान मालिक हो, जिस पर इंसान को विलायत हासिल हो। मसलन आपकी गाड़ी है तो आप इस गाड़ी के मालिक हैं और आपको इस गाड़ी पर विलायत है, आप इसको बेचना चाहें बेच सकते हैं, आप किसी को हिबा करना चाहें हिबा कर सकते हैं। तो देखो गाड़ी आपकी मिल्कियत भी है और इसके बेचने और हिबा करने की विलायत भी आप ही को हासिल है, जैद को यह विलायत हासिल नहीं है। लिहाजा अब आप जैद को भी यह विलायत दे देते हैं कि जाओ भाई मेरी यह गाड़ी बेच कर आ जाओ। तो आप देखो जैद तो इस गाड़ी का मालिक भी नहीं था, उसको इसके बेचने का इख्तियार भी नहीं था, यह इख्तियार गाड़ी के मालिक ने उसे दे दिया कि जाओ जाकर यह गाड़ी बेच कर आओ भाई। तवज्जो है। तो लिहाजा जब भी किसी को वकील बनाया जाता है तो ऐसी चीज में वकील बनाया जाता है जिसकी विलायत उस मुवक्किल को हासिल होती है और वकील को उसकी विलायत हासिल नहीं होती। और यहां पर माले मुबाह का लेना वो तो सबके लिए जायज है भाई, जैद जाए वो भी ला सकता है, अमर जाए वो भी ला सकता है, और जो लाएगा उसका मालिक बन जाएगा। लिहाजा मुबाह चीज के लेने में दूसरे को वकील बनाना सही ही नहीं है भाई, क्योंकि ना उस मुवक्किल की मिल्कियत है और ना उसको उसकी विलायत हासिल है। बात समझ में आ गई। दावा क्या था कि मुबाह चीज के लेने में तौकील बातिल है भाई, तो मुबाह चीज के लेने में तौकील बातिल है। लिअन्ना अमरल मुवक्किल बिही गैर सहीह, इसलिए क्योंकि मुवक्किल का इस मुबाह चीज को लेने का हुक्म देना गैर सहीह, ये सही नहीं। मुवक्किल का इस मुबाह चीज के लेने का हुक्म देना यह सही ही नहीं, क्योंकि मुवक्किल को न उस चीज पर मिल्कियत हासिल है और न उस पर विलायत हासिल है भाई। लिहाजा मुवक्किल का हुक्म देना ही सही नहीं, मुवक्किल का वकील बनाना ही सही नहीं है। यह एक दलील हो गई। दूसरी दलील, वकील का वकील बनना भी सही नहीं है, मुवक्किल का वकील बनाना भी नहीं सही और वकील का वकील बनना भी नहीं सही, यह दूसरी दलील है। बात समझ में आ गई। वजह यह कि वकील जो है वो तो किसी इंसान का नाइब होता है और नाइब उसी चीज में होगा जिसका खुद वकील को इख्तियार नहीं था भाई, खुद वकील को उसका इख्तियार नहीं था, तो दूसरा उसको फिर वो इख्तियार दे देता है। मसलन जैद आपकी गाड़ी नहीं बेच सकता था लेकिन आपने उसको इख्तियार दे दिया कि जाओ जाकर ये गाड़ी बेच कर आ जाओ भाई। तो लिहाजा वकील जो है वो मुवक्किल का नाइब होता है और नाइब उसी चीज में बन सकता है जिसका वकील को खुद इख्तियार ना हो भाई। तो कहते हैं वल वकील यमलिकुहु, और वकील जो है वो भी मुबाह चीज का मालिक बन जाता है बिदूनी अमरी ही, मुवक्किल के हुक्म के बगैर ही। वकील खुद भी मुबाह चीज का मालिक बन जाता है मुवक्किल के कहे बगैर ही। फला यस्लुहु नाइबन अनहु, लिहाजा वकील जो है मुवक्किल की तरफ से नाइब नहीं हो सकता, इस मुबाह चीज के लाने में उसकी तरफ से नाइब नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ यहां वकालत दुरुस्त नहीं, जब वकालत दुरुस्त नहीं तो शिरकत भी सही नहीं, क्योंकि शिरकत में तो वकालत होती है। दावा समझ में आया। दावा क्या था कि मुबाह चीज के लेने में वकील बनाना सही नहीं, क्योंकि मुवक्किल का वकील बनाना सही नहीं और वकील का वकील बनना सही नहीं है भाई। आगे देखिए, कहते हैं वह इन नमा यसबुतुल मिल्क लहुमा बिल अख्ज़ वल इहराज़ल मुबाह। अब यहां से बतला रहे हैं कि मुबाह चीज के अंदर वकील बनाना तो सही नहीं, तो मुबाह चीज का मालिक कैसे बना जाएगा? तो साहिब हिदायत आपको बतला रहे हैं कि मुबाह चीज का मालिक जो है उस चीज को ले लेने से, उसको उठा लेने से, उसको जमा कर लेने से इंसान उसका मालिक बन जाता है। लिहाजा जिसने लकड़ियां जमा की वो लकड़ियों का मालिक है, जिसने शिकार पकड़ा वो शिकार का मालिक है भाई। तो कहते हैं वह इन नमा यसबुतुल मिल्कु लहुमा, और ये दोनों शरीकों के लिए मिल्कियत साबित होगी बिल अख्ज़ी व इहराज़िल मुबाही, बिल अख्ज़ी ले लेने से कि उस चीज को ले लें, उस मुबाह चीज को ले लें, उसको उठा लें। व इहराज़िल मुबाही, और उस मुबाह चीज को जमा कर लेने से। अहरज़ा युहरिज़ु, इहराज़ का माना है जमा कर लेना भाई, समेट लेना। तो कहते हैं वह इन नमा यसबुतुल मिल्कु लहुमा बिल अख्ज़ व इहराज़िल मुबाही, और इन दोनों के लिए मिल्कियत साबित होगी उस मुबाह चीज को लेने से और उसको समेट लेने से। फइन अखादाहु मान, अब यहां तीन सूरतें बनती हैं। दो आदमियों ने आपस में मुबाह चीज के लेने पर अक़्दे शिरकत कर लिया, अब यह शिरकत तो दुरुस्त नहीं है, तो अब दोनों वो चीज लेने जाते हैं, या तो दोनों मिलकर उन चीजों को इकट्ठा करेंगे तो फिर तो दोनों की मिल्कियत है, निसफ एक की और निसफ दूसरे की। और अगर दोनों में से एक ने उन चीजों को जमा किया, दूसरे ने कोई अमल नहीं किया, तो जो अमल करने वाला है वही मालिक होगा। और तीसरी सूरत यह है कि जमा तो एक ने किया है लेकिन दूसरे ने मदद की है सिर्फ, तो जो जमा करने वाला है, जो समेटने वाला है, वो है मालिक, और वो जो मदद करने वाला है उसको उसकी उजरत मिलेगी। मसलन क्या मदद की? मसलन एक खास किस्म के पौधे ये जमा कर रहे हैं, तो एक उन पौधों को उखाड़ता जा रहा है और दूसरा उनको जमा कर रहा है। तो याद रखो, जो जमा कर रहा है, जो समेट रहा है, वो है मालिक भाई, क्योंकि मुबाह चीज को जो जमा कर ले और समेट ले वो मालिक बन जाता है। तो लिहाजा जमा करने वाला हुआ मालिक और उखाड़ने वाला जो है वो है मददगार, लिहाजा उसको उसके काम की, उसके अमल की उजरत दी जाएगी भाई। या दूसरी सूरत ले लें, एक ही शख्स उखाड़ भी रहा है और जमा भी कर रहा है उन पौधों को, जबकि दूसरा शरीक फिर बाद में इन सारों को उठाकर इसके साथ बाजार में ले आता है। तो याद रखो, इस सूरत के अंदर भी जिसने उखाड़ा और जमा किया है जी, वो है मालिक, और जंगल से इसको बाजार तक लाने वाला उसने सिर्फ लाने के अंदर मदद की है, तो उसको उसके लाने की उजरत दी जाएगी। तो अगर दोनों ने जमा किया तो दोनों मालिक, अगर एक ने जमा किया है और दूसरे ने कोई काम नहीं किया तो जमा करने वाला सारे का मालिक है, और अगर एक ने जमा किया है और दूसरे ने मदद की है तो जमा करने वाला मालिक और मदद करने वाले को उसकी उजरत दी जाएगी। तो कहते हैं फइन अखदाहुमा, अगर इन दोनों ने उस मुबाह चीज को इकट्ठा लिया, फहुआ बैनहुमा निस्फानी, तो ये उन दोनों के दरमियान आधी आधी होगी, यानी कि आधी आधी के दोनों मालिक होंगे। लिस्तिवा इही माफी सबब इस्तेहकाकी, इस वजह से कि दोनों बराबर हैं इस्तेहकाक के सबब में। मुबाह चीज का मुस्तहिक कोई कैसे बनता है? जो उसको ले ले, जो उसको जमा कर ले, वो मालिक बनता है। तो सबब इस्तेहकाक में दोनों बराबर हैं, दोनों ने जमा किया है तो दोनों मालिक हैं। तो कहते हैं लिस्तिवा इहिमा फी सबब इस्तेहकाकी, बवजह दोनों के बराबर होने के इस्तेहकाक के सबब के अंदर, व इन अखदहु अहदुहुमा, और अगर इन दोनों में से एक ने उस मुबाह चीज को लिया है, वलम यामलिल आखरु शैआ, और दूसरे ने कोई अमल नहीं किया, फहुवा लिल आमिली, तो यह सारी मुबाह चीज जो है उस आमिल की है जो अमल कर रहा है, जिसने अमल नहीं किया उसका कोई हिस्सा नहीं भाई। वह इन आमिला आहदुहुमा, और अगर उन दोनों में से एक ने अमल किया है, वह आनहुल आखरुफी अमली ही, और दूसरे ने उसके अमल में उसकी मदद की है, बी अन कलाहू, ये बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं कि कैसे दूसरे ने मदद की। कहते हैं बी अन कलाहू आहदुहुमा, बाई सूरत के इन दोनों में से एक ने उसको उखाड़ा है, वह जमाहुल आखरु, और दूसरे ने उसको जमा किया है, तो जमा करने वाला मालिक और उखाड़ने वाला मददगार है भाई। आगे देखिए, औकलाहु व जमाहु व हमलहुल आखर, तवज्जो है, इबारत पे नजर है, औकलाहु या उसने उसको उखाड़ा है, व जमाहु और उसको जमा किया है, व हमलहुल आखर और दूसरे ने उसको उठाया है, दूसरे ने उसको उठाया है, यानी उठाकर बाजार तक या बस्ती तक लेकर आया है। तो याद रखो यहां औ कलाहू व जमाहू, इन दोनों के अंदर जो जमीर है वो पीछे राज होगी, जो पीछे अहदुहुमा आया, औ कलाहू व जमाहू अहदुहुमा, कि उन दोनों में से एक ने इनको उखाड़ा भी है और जमा भी किया है, वह हमलहुल आखरु, और दूसरे ने इनको उठाया है भाई, वो उठाकर इसको लाया है भाई। बात समझ में आ गई। तो हिदाया के बाद नुस्खों में इबारत इसी तरह है, औ कलाहु व जमाहु व हमलहुल आखर, यानी कला और जमा के अंदर जमीर लौटानी पड़ेगी पीछे अहदुहुमा की तरफ, जबकि हिदाया के बाद नुस्खों में कला और जमा के बाद बाकायदा अहदुहुमा अलग जिक्र है, और वो इबारत ज्यादा मुनासिब है, यानी बिल्कुल वाज़ह है भाई। लेकिन बहरहाल दोनों तरह की इबारतें हिदाया के नुस्खों में मौजूद हैं। बाद नुस्खों में इबारत यूं है, औ कलाहु व जमाहु अहदुहुमा व हमलहुल आखर, तवज्जो है। तो यहां कला और जमा के बाद अहदुहुमा जिक्र है बाज हिदाया के नुस्खों में। तो कहते हैं औकलाहु व जमाहु, या दोनों में से एक ने उसको उखाड़ा और उसको जमा किया, वहमलहुल आखरु, और दूसरे ने उसको उठाया, फलिल मुईनी अजरुल मिसली, तो मददगार के लिए अजरे मिसल होगा, यानी इस जैसे काम की जो उजरत बनती है वो उसको मिलेगी। तो कहते हैं फलिल मुईनी अजरुल मिसली, तो मददगार के लिए अजर मिसल होगा, बालिगा मा बलगा, जहां तक भी वो पहुंचे, इंदा मोहम्मदीन रहिमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमला के नजदीक। भाई याद रखिए, आपको बतलाएंगे, इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं कि मददगार को उसके अमल की उजरत दी जाएगी, जितनी भी ये उजरत हो देना पड़ेगी। मसलन जो पौधे वो उखाड़ कर लाए उनकी कीमत बनती है 20 दिरहम, और ये जो मददगार था इस जैसे काम की उजरत, मसलन उसने सारा दिन उसके साथ मदद की है तो इसके सारे दिन की उजरत बनती है 30 दिरहम। अब वो जो पौधे लाए वो हैं 20 दिरहम के, लेकिन उस दूसरे मददगार की उजरत कितनी बनती है? 30 दिरहम, यानी वो मुबाह चीज की सारी कीमत से भी बढ़कर उजरत बन रही है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं सारी उजरत देनी पड़ेगी जितनी भी बन रही है, चाहे उस मुबाह चीज के समन से ज्यादा ही उजरत क्यों ना बने, बहरहाल वो सारी उजरत देना पड़ेगी। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दूसरे को उसके अमल की उजरत दी जाएगी, लेकिन ये उजरत इस मुबाह चीज के समन के निसफ से जायद नहीं होनी चाहिए। ये पौधे जो लेकर आए कितने के फरोख्त हुए? 20 दिरहम के, तो 20 का निसफ जो है वो 10 बनता है, तो दूसरे को उसके अमल की उजरत दी जाएगी लेकिन वो 10 दिरहम से ज्यादा नहीं दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी देंगे? 10 दिरहम उसको उजरत देंगे। भाई क्या वजह है 10 दिरहम से ज्यादा क्यों नहीं देंगे? तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निसफ पर वो खुद राजी था। भाई भाई जब दोनों ने अक़्द शिरकत किया था तो क्या फैसला हुआ था कि जो भी माले मुबाह लाएंगे आधा तुम्हारा होगा आधा मेरा होगा। मालूम हुआ उसने खुद ही उसके साथ तय कर लिया था कि जो भी समन हासिल होंगे आधे आधे तकसीम करेंगे, तो उसका मतलब है 10 दिरहम पर वो दूसरा शरीक खुद ही राजी है, लिहाजा 10 से जो जायद उजरत बनती है उसके अमल की गोया उसने खुद ही साकित कर दी है कि मैं इतने में ही राजी हूं, लिहाजा उसको उस मुबाह चीज के समन के निसफ के बकदर ज्यादा से ज्यादा उजरत दी जाएगी, इससे ज्यादा उजरत नहीं दी जाएगी। तो कहते हैं फलिल मुईनी अजरुल मिसली, तो मददगार के लिए अजर मिसल होगा, यानी उस जैसे कामों की जो उजरत होती है वो उस मददगार के लिए होगी। बालिगा मा बलगा इंदा मोहम्मदिन रहमहुल्लाह ताला, जहां तक भी वो उजरत पहुंचे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। वह इंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह ला युजा वसू बिही निस्फु समनी जालिका, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक इसके जरिए तजावुज नहीं किया जाएगा निस्फु समनी जालिका, उस मुबाह के निस्वे समन पर, उस मुबाह चीज के निस्वे समन पर तजावुज नहीं करेंगे क्योंकि निसफ पर वो खुद राजी हो चुका है। भाई तो कहते हैं ला युजा वजू भी निस्फ समन इजालिका, तो तजावुज नहीं किया जाएगा इस उजरत के जरिए उस मुबाह चीज के निस्फ समन पर। वकद उरिफा फी मौज़िही, और तहकीक के बाद अपने मकाम में जानी गई है, इस बात का पता अपने महल से चलता है। ये जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जितनी भी उजरत हुई वो देना पड़ेगी, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक निस्व समन से जायद उजरत नहीं दी जाएगी, इसका पता अपने महल से चलता है। तो शारहीन फरमाते हैं इसके जरिए साहिब हिदाया का इशारा है इजारा फासिदा के बाब की तरफ, इसके जरिए इशारा है इजारा फासिदा के बाब की तरफ। तो ये शारहीन फरमाते हैं वकद उरिफा फी मौज़िही, इसका पता अपने महल से चलता है, इसके जरिए इशारा है इजारा फासिदा के बाब की तरफ। भाई जबकि बाद शारहीन फरमाते हैं कि इसके जरिए साहिब हिदाया का जो इशारा है वो मबसूत की किताबु शिरकत की तरफ है, मबसूत के किताबो शिरकत की तरफ है, वहां से पता चलता है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जब शिरकत फासिद हो गई है तो जितनी उजरत बनती है वो अमल करने वाले को दी जाएगी, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक निस्व समन से जायद उजरत नहीं दी जाएगी। आगे देखिए قال وإذا اشترك ولي أحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليها الماء। सूरत मसला ये, भाई दो आदमी ने आपस में अक़्द शिरकत कर लिया, एक के पास खच्चर है और एक के पास पानी का मिशकीजा है, मिशकीजा जो चमड़े का होता है जिसमें पानी वगैरह लाया जाता है। तो दो आदमियों ने आपस में अकद शिरकत कर लिया, एक का खच्चर है, एक के पास पानी का मिशकीजा है। ये अकद किया कि हम दोनों दरिया से पानी लाया करेंगे और फिर जो उजरत मिलेगी वो उजरत हम दोनों आपस में तकसीम कर लिया करेंगे। तो याद रखो ये इजारा फासिद है, ये इजारा फासिद है। क्यों फासिद है? वजह ये कि ये पानी के लाने पर शिरकत कर रहे हैं और पानी तो मुबाह है, जो पानी ले आएगा वो पानी उसी का है भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह ईदश तारा का, और जब दो आदमी आपस में शरीक हो गए, वली अहदिहिमा बगलुन और दोनों में से एक का खच्चर है, वलिल आखरी रावियतुन और दूसरे का मिशकीजा है। याद रखो राविया भाई, राविया असल में उस ऊंट को कहते जिस पर पानी लाया जाता था, जिस ऊंट पर पानी लाया जाता था उसको राविया कहते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यह नाप उस मिशकीजे का पड़ गया जिसके अंदर वो पानी लाते थे भाई। तो यहां राविया से मुराद मिशकीजा है भाई। तो कहते हैं वलील आखरी रावियतुन और दूसरे का मिशकीजा है, यस्तकी अलै हलमा जिस पर वो पानी लाता है, फलकसबू बैनहुमा तो कमाई उन दोनों के दरमियान होगी। ये अभी आपस में अक़्द शिरकत कर रहे हैं, दो आदमियों ने आपस में अक़्द शिरकत कर लिया, एक का खच्चर है और एक का पानी का मिशकीजा है जिस पर पानी लाएंगे, तो फल कस्बु बैनहुमा और कमाई दोनों के दरमियान तकसीम होगी। ये अभी खुद आपस में अक़्द शिरकत कर रहे हैं, अभी हुक्म नहीं आया। फल कस्बु बैनहुमा से ये ना समझें कि साहिब हिदायत हुक्म बतला रहे हैं कि कमाई दोनों में तकसीम होगी, नहीं नहीं, ये अभी वो खुद आपस में तय कर रहे हैं। तवज्जो है। और याद रखना यहां आया यस्तकी, इस्तका यस्तकी के माने होते हैं पानी लाना भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह ईदश तारका, जब दो आदमियों ने आपस में शिरकत कर ली, वली अहदिहिमा बगलुन और उन दोनों में से एक का खच्चर है, वलिल आखरी रावियतुन यस्तकी अलैह अलमा और दूसरे का मिशकीजा है जिस पर पानी लाएंगे, फल कस्बु बैनहुमा तो कमाई दोनों के दरमियान होगी। ये आपस में वो तय कर रहे हैं। तो कहते हैं लम तसे हज शिरकतु, तो ये शिरकत सही नहीं है, वल कस्बु कुल्लुहु लिल्लज़ी इस्तका और कमाई सारी उसी की होगी जो पानी लाया। सारी कमाई किसकी होगी? जो पानी लाया। आपने पढ़ा कि मुबाह चीज को जो जमा कर ले, जो समेट ले, जो ले ले, वो उसका मालिक होता है। तो जो पानी लाया है वो है पानी का मालिक भाई। तो सारी कमाई इसी की होगी और दूसरे को उजरत दी जाएगी। अगर दूसरे का खच्चर है तो खच्चर की जो उजरत बनती है वो दी जाएगी, और अगर दूसरे का मिशकीजा है तो उसको मिशकीजे की उजरत दी जाएगी भाई। तो कहते हैं वलकस बुकुल लुहू लिल्लज़ी इस्तका और कमाई सारी उसी की होगी जो पानी लाया है, वह अलैही अजरु मिस्ल रावियती और उस पर अजरे मिसल होगा मिशकीजे का, यानी इस जैसे मिशकीजे की जो उजरत बनती है वो होगी। तो कहते हैं वाले ही अजरु मिसल रावियती और इस पर जो है मिशकीजे की उजरतें मिसल होगी, इनका नल आमिलु साहिबल बगली अगर अमल करने वाला खच्चर वाला है, वो जिसने अमल किया है अगर वो खच्चर वाला है तो मिशकीजे वाले को मिशकीजे की उजरत देगा, वह इनकाना साहिबा रावियती और अगर अमल करने वाला मिशकीजे वाला है, फाले ही अजरु मिसलिल बगली तो उस पर खच्चर की अजरे मिसल है, इस जैसे खच्चर की जो उजरत बनती है वो उजरत देना पड़ेगी। तो कहते हैं वह इनकाना साहिबा रावियती और अगर जो अमल करने वाला है वो मिशकीजे वाला है, फाले ही अजरु मिसलिल बगली तो उस पर खच्चर का अजरे मिसल है। अम्मा फसाद शिरकती, यहां तक तो मतन था, अब शरा आ गई भाई। मतन में आया कि यह शिरकत सही नहीं है, यह शिरकत बातिल है, फासिद है। तो अब उसकी वजह बयान करेंगे और फिर बयान करेंगे कि पानी एक का है और दूसरे को उजरत क्यों देना पड़ेगी, वो भी फिर बयान करेंगे। पहले फसाद को बयान करेंगे। कहते अम्मा फसाद शिरकती, तो शिरकत का फासिद होना जो है, फलिन इकादिहा अला इहराजिल मुबाही, इस वजह से कि यह शिरकत मुनाकिद हुई है मुबाह चीज के जमा करने पर, वहुअल माऊ और वह मुबाह चीज पानी है, और मुबाह पर तो शिरकत सही नहीं, तो यह शिरकत फासिद है। अम्मा वुजूबुल अजरी और बाकी उजरत का वाजिब होना, फली अन्नल मुबाह इदा सारा मिलकन, इसलिए क्योंकि मुबाह चीज जब मिल्कियत बन गई, लेल मुहरिजी जमा करने वाले के लिए, जब मुबाह चीज जमा करने वाले की मिल्कियत बन गई, भाई वो कौन है जमा करने वाला, कहते हैं वो हुवल मुस्तकी, और वो पानी लाने वाला है। तर्जमा समझ में आ रहा है? फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह अम्मा वजूबुल अजरी, और बाकी उजरत का वाजिब होना, फली अन्नल मुबाह इदा सार मिल्कन लिल मुहरिजी, इसलिए क्योंकि मुबाह चीज जब समेटने वाले की मिल्कियत हो गई, वह हुवल मुस्तकी, और वो समेटने वाला जो है वो पानी लाने वाला है, वह कदिस्तौफा मनाफिया मिल्किल गैरी, और तहकीक इसने गैर की मिल्कियत के मनाफे वसूल किए हैं, इसने गैर की चीज से नफा उठा आया है, तो लिहाजा उसको उसकी उजरत देना पड़ेगी भाई। तो कहते हैं वकद इस्तौफा मनाफिया मिल्किल गैरी, और तहकीक इसने जो है गैर की मिल्कियत के मनाफिया वसूल किए हैं, वह हुवल बगलु अविर रावियतु, और वह खच्चर या मिशकीजा है। दोनों में से एक अमल कर रहा है ना, अगर खच्चर वाला अमल कर रहा है तो उसने दूसरे के मिशकीजे से नफा उठाया है, और अगर मिशकीजे वाला पानी लाया है तो उसने दूसरे के खच्चर से नफा उठाया है। तो कहते हैं वह हुवल बगलु अविर रावियतु, और दूसरे की जो मिल्कियत है वो खच्चर या मिशकीजा है, और इससे उसने फायदा उठाया है, बेअकदिन फासिदिन, अकद फासिद के जरिए, फयल जमुहु अजरुहु, तो उस पर उसकी उजरत लाजिम होगी। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, वकुल्लु शिरकतिन फासिदतिन फर्रिफु फीहा अला कद्रिल माल। भाई यहां तक तो यह बतलाया कि मुबाह चीज पर शिरकत सही नहीं, वो शिरकत फासिद है, और उसका क्या हुक्म है वो बयान कर दिया। अब अगर एक ऐसी चीज है कि उस पर शिरकत सही है भाई, मसलन दो आदमी आपस में शिरकत मुफावजा या इनान कर लेते हैं तिजारत के अंदर भाई, तो आप तिजारत के अंदर तो शिरकत सही है, लेकिन शिरकत के अंदर उन्होंने कोई ऐसी शर्त लगा दी जो शिरकत के खिलाफ है, जो शिरकत को बातिल करने वाली है। मसलन जैद और अमर ने आपस में आपदे शिरकत कर लिया, जैद ने कहा कि नफे में से पहले 10 दिरहम जो होंगे वो मेरे होंगे और बाकी का नफा हम दोनों आपस में तकसीम करेंगे। तो आप पढ़ चुके कि किसी के लिए मुअय्यन दिरहमों की शर्त लगाना ये सही नहीं, क्योंकि ये शर्त शिरकत को बातिल करने वाली है। हो सकता है नफा ही 10 दिरहम हो, तो फिर तो वो सारा जैद ले जाएगा, तो अमर के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखो नफे के अंदर शिरकत ही खत्म हो जाती है किसी के लिए मुअय्यन दिरहमों की शर्त लगाने से। तो लेकिन अगर दो आदमियों ने इस तरह आपदे शिरकत कर लिया और इस तरह की शर्त लगा दी, तो फिर क्या हुक्म है? तो कहते हैं यह शिरकत फासिद है, यह शिरकत फासिद है, और इस सूरत के अंदर अब जो दफा दोनों में तकसीम होगा वह माल के बकदर तकसीम होगा। तवज्जो है, बेशक इन्होंने कमी बेशी की शर्त लगाई थी, जैद ने कहा था पहले 10 दिरहम मेरे होंगे और बाकी नफे के अंदर 70% मेरा होगा और 30% अमर का होगा। तो इस सूरत के अंदर जब ये शिरकत फासिद हो गई तो कमी बेशी की शर्त भी फासिद हो गई। अब जितना दोनों का माल है उसी के बकदर दोनों नफे के मुस्ताहिक होंगे। अगर माल आधा आधा है तो नफा भी आधा आधा ही होगा। तो कहते हैं वकुल्लु शिरकतिन फासिदतिन, और हर वो शिरकत जो फासिद है, फर्रिफु फीहा अला कद्रिल माली, तो नफा उसके अंदर माल के बकदर होगा। वयबतुलु शर्तु तफाजुली, और कमी बेशी की जो शर्त है वो बातिल होगी। लिअन्न अर्रिबह फीहा ताबिउन लिल माली, इसलिए क्योंकि जो नफा है फीहा इस शिरकत फासिदा में, जो नफा है इस शिरकत फासिदा में, ताबिउन लिल माली, वो माल के ताबे है। इधर देखिए, यह बात पीछे बयान हो चुकी है इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमुल्ला के नजदीक, ये जो नफा होता है यह माल की फरा है, लिहाजा जिसका जितना माल उसी के बकदर नफा भी होगा। जबकि इंदल अहनाफ जो है यह नफा जो है यह अकद की फरा है, नफा अकद की फरा है, लेकिन यह उस वक्त है जब शिरकत सही हो। अगर शिरकत फासिद हो गई तो हमारे नजदीक भी जो नफा आएगा अब यह माल की फरा है। जब यह माल की फरा है तो जिस शरीक का जितना माल है नफे में भी उसका उतना ही हिस्सा होगा भाई। तो कहते हैं लिअन्न अर्रिबह फीहा ताबिउन लिल माली, इसलिए क्योंकि शिरकत फासिदा के अंदर जो नफा है वो माल के ताबे है। फयतकद्दरु बिकद्री ही, तो ये नफा मुकर्रर होगा उसी के बकदर। कमा अन्न रया ताबिउन लिल बज़्र फिल मुज़ारअती, रयउन भाई, रय कहते हैं पैदावार को भाई, रय जमीन से जो पैदावार हासिल हो, फसल वगैरह हासिल हो, और बज़्रुन, बज़्र भाई ये बीज को कहते हैं। मसलन भाई दो आदमी आपस में मुजारअत के अंदर आकदे शिरकत कर लेते हैं कि हम दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे और जो पैदावार हासिल होगी उसमें हम दोनों शरीक होंगे। अलबत्ता दोनों ने आपस में एक ऐसी शर्त लगा दी जो आकदे शिरकत के मुनाफी है। मसलन एक शरीक कहता है कि जो भी पैदावार हासिल होगी पहले 100 मन जो पैदावार होगी वो मेरी होगी और बाकी जितनी पैदावार होगी वो हम दोनों आपस में आधी आधी तकसीम करेंगे। तो यहां एक के लिए मुअय्यन पैदावार की शर्त लगाना तो ये तो शिरकत के मुनाफी है भाई, क्योंकि हो सकता है सारी पैदावार ही 100 मन हासिल हो, फिर वो तो एक शरीक ले जाएगा, दूसरे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी शर्त है जो शिरकत के मुनाफी है, शिरकत को खत्म करने वाली है। तो अगर इस तरह की शर्त लगा दी दो शिरकत करने वालों ने खेती बाड़ी के अंदर, तो याद रखो ये शिरकत फासिद हो गई। जब शिरकत फासिद हो गई तो अब याद रखो ये सारी फसल उस आदमी की होगी जिसका बीज था, दोनों शरीकों में से जिसका बीज था ये सारी फसल उसी की होगी, क्योंकि ये जो पैदावार है ये जो फसल है ये बीज की फरा है, बीज है असल और पैदावार उसकी फरा, लिहाजा सारी फसल जो है वो बीज वाले की होगी और दूसरे शरीक को उसकी उजरत दी जाएगी, उसने जो इतने महीने जो काम किया उसकी जितनी उजरत बनती है वो उसको दी जाएगी। सूरत समझ में आ गई? तो मालूम हुआ जब मुजारात के अंदर शिरकत बातिल हो जाए तो वहां पर भी पैदावार जो है वो बीज के ताबे होती है। इसी तरह शिरकत माल के अंदर भी जब शिरकत फासिद हो जाए तो नफा जो है वो माल के ताबे होगा, नफा माल के ताबे होगा। ये माना है कमा अन्नर रया ताबे उन लिल बजरी, जैसे कि पैदावार जो है वो बीज के ताबे होती है। फिर मुजारायती मुजारात के अंदर वह ज्यादा तो इन नमातुस्ताहकुबी तस्मियती, भाई इधर देखिए इन्होंने आपको बतलाया अगर शिरकत फासिद हो गई तो नफा दोनों के रासुल माल के बकदर होगा और वो जो कमी बेशी की शर्त लगाई थी अब उसका कोई एतबार नहीं है। अब उसी को बयान कर रहे हैं, नफे के अंदर तो कमी बेशी की शर्त लगाई थी ना, मसलन जैद ने कहा था मैं 70% नफा लूंगा और अमर को 30% नफा दूंगा, तो ये जो नफे के अंदर कमी बेशी थी ये आपस में तय करने की वजह से थी कि इन्होंने आपस में इतना मुकरर किया था। तो जब अकद ही फासिद तो ये तस्मिया और ये मुकरर करना भी फासिद हो गया। तो कहते हैं वह ज्यादा तो इन नमा तुस्ताहकु भी तस्मियती, और यह ज्यादती जो है इसका इस्तेहकाक होता है तस्मिया की वजह से यानी जिक्र करने की वजह से। वकद फसदत, और यह तस्मिया जो है यानी जिक्र करना और मुकरर करना यह तो फासिद हो गया अकद के फासिद होने की वजह से। फबकियल इस्तेहकाक वाला कदरी रासिल माल, तो लिहाजा रासुल माल के बकदर इस्तेहकाक बाकी रहा, तो जिसका जितना रासुल माल है नफे के अंदर भी उसका उतना ही हिस्सा होगा। भाई आगे देखिए वह इदा माता अहदु शरीकैन अविरतद्द वलहक बिदारिल हर्ब बतलति शिरकह, सूरत मसला यह दो आदमी ने आपस में आपने शिरकत किया है और फिर दोनों में से एक का इंतकाल हो गया, याद रखो इंतकाल होते ही अकदे शिरकत बातिल हो गया। वजह यह कि शिरकत की बुनियाद वकालत पर है, दोनों एक दूसरे के वकील हैं और जब एक का इंतकाल हो गया तो उसकी तरफ से वकालत भी खत्म हो गई, अब तो वो जिंदा ही नहीं तो उसकी तरफ से दूसरा वकील कैसे हो सकता है, लिहाजा जब वकालत खत्म तो अकदे शिरकत भी खत्म। भाई और फिर मौत दो किस्म पर आप पढ़ चुके हैं, एक मौत हकीकी है कि एक आदमी हकीकतन मर जाए और एक मौत हुक्मी भी आप पढ़ चुके हैं, अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए और भागकर दारुल हर्ब चला जाए और फिर काजी के पास मसला पहुंचा और काजी ने उसके दारुल हर्ब जाने का फैसला लिख दिया कि ये भागकर दारुल हर्ब जा चुका है, तो आप पढ़ चुके हैं काजी का यह फैसला भी मौत के हुक्म में है, भाई मौत के दर्जे में है। तो कहते हैं वह इदा माता अहदु शरीकैनी, और जब दोनों शरीकों में से एक मर गया अविर तद्दा, या दोनों शरीकों में से अल अयाज़ु बिल्लाह मुर्तद हो गया वलहिका बिदारिल हर्बी, और वह दारुल हर्ब से जा मिला बतलती शिरकतु, तो इस सूरत में शिरकत बातिल हो जाएगी। ले अन्नहा ततज़म्मनुल वकालता, इसलिए क्योंकि शिरकत जो है वकालत को मुतज़म्मिन होती है, वला बुद्द मिनहा, और वकालत का होना जरूरी है लियतहक्कक़ शिरकत हूं ताकि शिरकत पाई जाए, अला मा मर रहा उस वजह से जो बात पीछे गुजर गई कि वकालत होगी तो नफे में शिरकत आएगी, वल वकालत तब तुलु बिल मौती और वकालत जो है वो तो मौत की वजह से बातिल हो जाती है, वकदा बिल इल्तिहाक मुर्तदन और इसी तरह मुर्तद होकर दारुल हर्ब जा मिलने से भी, इसी तरह मुर्तद होकर दारुल हर्ब जाने से भी वकालत बातिल हो जाती है, इदा कजल काजी बिलहाकी ही जब काजी उसके दारुल हर्ब से जा मिलने का फैसला कर दे, लिअन्नहु बिमंजिलतिल मौती इसलिए क्योंकि काजी का यह फैसला भी मौत के दर्जे में है, अला मा बय्यन्नाहु मिन कबलू उस वजह से जो हमने पहले बयान कर दिया। पीछे भाई मुर्तदों के अहकाम बयान फरमाए थे साहिब हिदाया ने, बाबू अहकामिल मुर्तदीन के अंदर भाई वहां साहिब हिदाया ने यह बात जिक्र फरमाई थी भाई, तो कहते हैं लिअन्नहु बिमंजिलतिल मौती इसलिए क्योंकि काजी का यह फैसला जो है वो उस मुर्तद की मौत के दर्जे में है, अला मा बय्यन्नाहु मिन कबलू उस वजह से जो हमने माकबल में बयान कर दिया, वला फर्क बैनहुमा इदा अलिम शरीकु बिमौति साहिबिही औ लम यालम। भाई देखिए यहां से आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि वकील को वकालत से हटाना यानी माजूल करना, यह जो अजल है यह दो किस्म पर है, एक अजल हुक्मी और एक अजल कस्दी। अजल कस्दी यानी इरादे से माजूल करना, उसमें वकील को इलम होना जरूरी है। मसलन देखो भाई, जैद ने अमर को अपना वकील बनाया कि जाओ जाकर मेरे लिए एक गाड़ी खरीद कर ले आओ, अमर जो है गाड़ी खरीदने चला गया और इधर जैद का इरादा बदल गया, तो उसने किसी शख्स से कहा कि जाओ जाकर अमर को मना करो मेरे लिए गाड़ी न खरीदे, तो मालूम हुआ जैद ने अमर को वकालत से माजूल कर दिया है और यह अजले कसदी है, अपने इरादे से जैद अमर को माजूल कर रहा है वकालत से, लिहाजा इसके अंदर अमर को इलम होना जरूरी है, अमर को जब यह बात पहुंचेगी फिर ही वो वकालत से माजूल होगा, उससे पहले वो वकालत से माजूल नहीं, उससे पहले अगर उसने गाड़ी खरीद ली तो उस गाड़ी के अमर अब मुवक्किल ही के जिम्मे है क्योंकि मुवक्किल के कहने पर उसने यह गाड़ी खरीदी है। भाई तवज्जो है, मालूम हुआ अजल कसदी के अंदर वकील तब माजूल होगा जब उसको माजूल किए जाने का पता चल जाए, उसको इलम हो जाए, जबकि एक अजल हुक्मी है यानी माजूल होने का हुक्म लगा दिया जाता है जैसे मौत की वजह से। एक आदमी ने दूसरे को वकील बनाया, जाओ मेरे लिए गाड़ी खरीद कर लाओ, और इधर मुवक्किल का इंतकाल हो गया, तो याद रखो मुवक्किल के मरते ही वकील खुद ब खुद माजूल हो गया, अब वो वकील ना रहा, और ये अजल कौन सा है, अजले हुक्मी है यानी माजूल होने का हुक्म लगाया जाता है, और याद रखो अजले हुक्मी के अंदर वकील को इलम होना जरूरी नहीं है। लिहाजा जैद ने अमर को कहा जाओ जाकर मेरे लिए गाड़ी खरीद कर ले आओ, अमर गाड़ी खरीदने चला गया, इधर जैद का इंतकाल हो गया तो अजल हुक्मी पाया गया, लिहाजा अमर की वकालत खत्म हो गई, अगरचे बेशक इसको जैद के मरने का पता नहीं लेकिन फिर भी यह वकालत से माजूल हो चुका है, अब अगर अमर ने कोई गाड़ी खरीदी तो यह गाड़ी अमर ही की होगी क्योंकि जैद तो मर चुका है भाई, लिहाजा जैद के माल में से वो इस गाड़ी के समन वसूल नहीं कर सकता। तो कहते हैं वला फर्क बैनहुमा इदा अलिम शरीक बिमौति साहिबिही औ लम यालम, और कोई फर्क इसमें नहीं है कि शरीक को उस अपने साथी की मौत का इलम हो या इलम ना हो, जब एक शरीक मर गया तो वकालत खत्म, और वकालत खत्म तो शिरकत भी खत्म, तो दूसरे शरीक को अपने साथी के मरने का इलम हो या इलम ना हो भाई। तो कहते हैं वला फर्क बैनहुमा, और इस बात में कोई फर्क नहीं है, इदा अलिम शरीक बिमौति साहिबिही औ लम यालम, कि शरीक को अपने साथी की मौत का इलम हो या इलम ना हो, लिअन्नहु अज़लुन हुक्मियुन इसलिए क्योंकि यह अज़ले हुक्मी है, यह अज़ले हुक्मी है भाई, अज़ले हुक्मी है यानी यह मुवक्किल ने अपने इरादे से इसको माजूल नहीं किया बल्कि दूसरी चीज के जिमन में अजल आ रहा है यानी मौत के जिमन में अजल आ रहा है, लिहाजा इसके अंदर इलम का होना जरूरी नहीं। तो कहते हैं लिअन्नहु अज़लुन हुक्मियुन, ये अज़ले हुक्मी है यानी ये दूसरी चीज के जिमन में आ रहा है, कसदन इसको माजूल नहीं किया गया, फइज़ा बतलतिल वकालतु तो जब वकालत बातिल हो गई, बतलती शिरकतु तो शिरकत भी बातिल हो जाएगी, बिखिलाफी मा इज़ा फसख अहदु शरीकैन शिरकता, बखिलाफ इसके कि जब दो शरीकों में से एक ने शिरकत को फसख कर दिया, एक ने क्या कहा आज के बाद मेरी तरफ से शिरकत खत्म, तो अब यहां पर जब शिरकत खत्म होगी तो वकालत भी खत्म होगी, और यहां यहां अजले कसदी है, लिहाजा दूसरे को इलम होना जरूरी है भाई। तो कहते हैं बखिलाफ इमा इजाफा सखा अहदु शरीकैन शिरकता, बखिलाफ इसके कि जब दोनों शरीकों में से एक ने शिरकत को खत्म कर दिया, है सुयत वक्फु अला इल्म आखरी, क्योंकि यह मौकूफ है दूसरे के इलम पर, ले अन्नहु अज़लुन कसदियुन, इसलिए क्योंकि यह अज़ले कसदी है, वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए फसलुन وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه। भाई इस फसल के अंदर साहिबे हिदाया शिरकत के कुछ मसाइल बयान करेंगे। ये जो शिरकत है ये तिजारत के लिए की जाती है ताकि माल के अंदर ज्यादती हो, नफा कमाया जाए। तो इस फसल के अंदर साहिबे हिदाया कुछ ऐसे मसाइल बयान फरमाएंगे जिनका ताल्लुक शिरकत से तो है लेकिन तिजारत से उनका ताल्लुक नहीं। इससे माकबल शिरकत के वो मसाइल जिक्र हो रहे थे जिनका ताल्लुक तिजारत से था, अब कुछ वो मसाइल जिक्र होंगे जिनका ताल्लुक शिरकत से तो है लेकिन तिजारत से नहीं, तो उनको अलग इस फसल में जिक्र करेंगे। जैसे एक शरीक दूसरे को कहता है कि तुम्हें इजाजत है मेरी तरफ से मेरी जकात अदा कर दिया करो भाई। अब देखो जकात का अदा करना यह तो कोई तिजारत का काम नहीं है भाई। तो कहते हैं फसलुन वलैस लिअहदि शरीकैनि, और दोनों शरीकों में से किसी एक के लिए भी जायज नहीं है, अन युअद्दिय ज़कात मालिल आखरी, कि वो दूसरे के माल की जकात अदा करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाजत से, लिअन्नहु लैस मिन जिन्स तिजारति, इसलिए क्योंकि अदाय जकात जो है ये जिन्स तिजारत में से नहीं है, लिहाजा इसकी इजाजत दोनों को नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के वकील तो हैं लेकिन तिजारत के कामों में एक दूसरे के वकील हैं, अदाय ज़कात में एक दूसरे के वकील नहीं, इल्ला ये कि वो एक दूसरे को बाकायदा इजाजत दे दें, फिर उसमें वो वकील बन जाएंगे भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु लैस मिन जिन्स तिजारती, इसलिए क्योंकि ज़कात देना जो है यह तिजारत की जिन्स में से नहीं है, फइन अदीना कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा लिसाहिबिही अन युअद्दिय ज़कातहु, भाई सूरत यह दोनों शरीकों ने एक दूसरे को इजाजत दे दी कि तुम मेरी तरफ से मेरी जकात अदा कर सकते हो, और फिर दोनों ने जकात अदा कर दी। जैद एक जगह था उसने वहां जकात अदा कर दी, अमर दूसरी जगह था उसने वहां जकात अदा कर दी, तो क्या अब किसी पर जमान आएगा या नहीं? तो याद रखो इमाम साहेब फरमाते हैं कि अगर दोनों में से एक ने पहले जकात अदा की है दूसरे ने बाद में, तो जिसने पहले अदा की वो ज़कात अदा हो गई, और जिसने बाद में ज़कात अदा की है उस पर ज़मान आएगा, क्योंकि ये ज़कात किस में से अदा कर रहे हैं, माले मुश्तरका में से। जब माले मुश्तरका में से ज़कात अदा हो चुकी है और दूसरा फिर अदा कर रहा है तो ये जो दोबारा अदा कर रहा है ये तो ज़कात न हुई, जब ज़कात न हुई और इसने अदा की है तो इस पर ज़मान आएगा, इस शरीक पर जमान आएगा। और अगर दोनों ने इकट्ठी ज़कात अदा की है एक ही वक्त के अंदर, या वक्त तो एक नहीं है, वक्त तो अलग अलग है लेकिन पता नहीं चल रहा कि किसने पहले अदा की है और किसने बाद में, तो इसको भी इकट्ठा ही शुमार किया जाता है। तो जब इकट्ठा शुमार किया गया तो आप दोनों में से हर एक पर अपने साथी के हिस्से का जमान आएगा। जैद ने अपनी भी ज़कात अदा की और अमर की तरफ से भी अदा की, और अमर ने अपनी भी ज़कात अदा की और जैद की तरफ से भी अदा की, तो दोनों ने इकट्ठी अदा की है, तो जैद ने जो ज़कात अपनी अदा की वो अदा हो गई, और अमर की जो ज़कात इसने अदा की है अब वो इसको ज़मान देना पड़ेगा। इसी तरह अमर ने अपनी जो ज़कात अदा की वो तो अदा हो गई, और जैद की तरफ से जो इसने ज़कात अदा की उसका अब इसको ज़मान देना पड़ेगा। सूरत समझ में आ गई। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक है। कहते हैं फइन अदीना कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा लिसाहिबिही, तो अगर दोनों शरीकों में से हर एक ने अपने साथी को इजाजत दे दी कि अय्युअद्दिय ज़कातहु, कि वो उसकी जकात अदा कर सकता है, फअद्दा कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा, फिर दोनों में से हर एक ने जकात अदा कर दी, फसानी ज़ामिनुन, तो दूसरा जो है वो ज़ामिन होगा। दोनों ने ज़कात अदा की लेकिन एक ने पहले अदा की और दूसरे ने बाद में, तो जो सानी है जो दूसरे नंबर वाला है जिसने बाद में अदा की है वो ज़ामिन होगा। तो कहते हैं फअद्दा कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा, तो दोनों में से हर एक ने ज़कात अदा कर दी, फसानी ज़ामिनुन, तो दूसरा जो है वो ज़ामिन होगा, अलिम बि अदा इल अव्वल अव लम यालम, चाहे उसको पहले की अदा का इलम हो या इलम ना हो, इमाम साहब के नजदीक दूसरे पर हर हाल में जमान आएगा, चाहे उसको पहले की अदाए जकात का इलम हो या इलम ना हो। तो कहते हैं उसको पहले की अदा का इलम हो या इलम ना हो, वहादा इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, और ये इमाम साहिब के नजदीक है। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं, ला यजमनु इदा लम यालम, कि जब सानी को इलम ना हो तो उस पर जमान नहीं आएगा। जब सानी को इलम ही नहीं है तो उस पर जमान भी नहीं। ये किसके नजदीक? साहिबैन के नजदीक। तो कहते हैं वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं, ला यजमनु इदा लम यालम, के सानी जामिन नहीं होगा जब उसको इलम ना हो। वहादा इदा अद्दया अलत ताकुबी, ताकुब का माना है यके बाद दीगरे होना, एक चीज का दूसरी चीज के बाद होना। तो यहां पर भी एक ने पहले अदा की है और दूसरे ने बाद में, यानी ताकुब के तरीके पर जकात अदा की गई है। तो इमाम साहब के नजदीक सानी जामिन होगा, और साहिबैन के नजदीक सानी को जब इलम ना हो तो वो जामिन नहीं होगा। तो कहते हैं वहादा इदा अद्दया अलत ताकुबी, और ये जो सानी पर जमान आएगा इमाम साहब के नजदीक, ये उस वक्त है जब दोनों ने ताकुब यानी यके बाद दीगरे जकात अदा की है। अम्मा इदा अद्दया मान, और बाकी वो सूरत के जब दोनों ने इकट्ठी जकात अदा की है, तो जमीना कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा, तो इन दोनों में से हर एक जामिन होगा, नसीब साहिबिही, अपने साथी के हिस्से का। जब दोनों ने इकट्ठी जकात अदा की है तो इमाम साहब के नजदीक दोनों में से हर एक अपने साथी के हिस्से का जामिन होगा, जबकि साहिबैन के नजदीक जब दोनों ने इकट्ठी जकात अदा की है तो किसी पर जमान नहीं आएगा। आगे देखिए, वाला हादल इख्तिलाफिल मामूर भी अदा इस जकाती इदा तसद्दक अलल फकीर बादमा अद्दल आमिर भी नफसी ही। भाई अब जरा शिरकत के मसले को एक तरफ रखें। सूरत मसला यह कि जैद ने अमर को कुछ माल दिया कि मेरी तरफ से यह जकात जो है फकीर को अदा कर दो। अमर वो माल लेकर चला गया। भाई इधर जैद के पास कोई और फकीर आ गया तो जैद ने अपनी जकात उस फकीर को अदा कर दी। उधर वकील ने वो जो माल उसको दिया गया था वो उसने किसी फकीर को दे दिया। अब जाहिर सी बात है जकात तो एक दफा अदा होती है, दो दफा तो अदा नहीं होती, लिहाजा मुवक्किल ने जब खुद अदा कर दी तो वो तो जकात हो गई। अब जो वकील अदा करेगा वो जकात नहीं। तो इस सूरत के अंदर क्या इस वकील पर जमान आएगा या नहीं? तो इमाम साहब फरमाते हैं कि ये वकील जो है इसने मुवक्किल की मुखालफत की है, और वकील जब मुवक्किल की मुखालफत करे तो उस पर जमान आता है, लिहाजा वकील पर जमान आएगा, क्योंकि मुवक्किल ने तो उसे जो माल दिया था वो उसे बतौर जकात के देने का हुक्म दिया था, और जकात तो मुवक्किल ने खुद अदा कर दी। तो अब जब वकील उस माल को फकीर के हवाले करेगा, फकीर को उसका मालिक बनाएगा, तो यह तो जकात अदा ना हुई, हालांकि मुवक्किल ने तो वकील को जकात अदा करने का हुक्म दिया था, तो वकील ने मुवक्किल की मुखालफत कर दी। और जब वकील मुवक्किल की मुखालफत करे तो वकील पर जमान आता है। याद रखो ये अहम जाब्ता है। आप एक आदमी को किसी चीज के लिए वकील बनाते हैं, अगर वकील आपके कहने पर अमल करे तो फिर तो उस पर कोई जमान नहीं, लेकिन अगर वकील ने मुवक्किल की मुखालफत कर दी तो फिर वकील पर जमान आता है। मसलन मैंने वकील को 1,00,000 रुपया दिया कि जाकर जैद को दे दो, और वकील गया और उसने वो माल जो है वो अमर को दे दिया, तो याद रखो वकील ने मुवक्किल की मुखालफत की है, लिहाजा वकील पर जमान आएगा, अब उसे ये 1,00,000 रुपया अदा करना पड़ेगा। तो इमाम साहब फरमाते हैं मुवक्किल ने वकील को जकात अदा करने का कहा था, लेकिन वकील ने जो अदा किया वो तो जकात नहीं, क्योंकि जकात तो मुवक्किल ने खुद ही अदा कर दी थी। तो वकील ने मुवक्किल की मुखालफत कर दी, और वकील ने जब मुवक्किल की मुखालफत की है तो वकील पर जमान आएगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, वकील ने मुवक्किल की कोई मुखालफत नहीं की, वकील के बस में जितना था वो वकील ने किया, उसकी तरफ से कोई कोताही नहीं। वकील के बस में सिर्फ इतना था कि ये जो माल उसको दिया है मुवक्किल ने, वकील इस माल का मालिक किसी फकीर को बना दे, किसी गरीब और मिस्कीन को यह माल दे दे, वकील के इख्तियार में सिर्फ इतना था, बाकी ये जो अदायगी है ये जकात भी बन जाए, ये वकील के इख्तियार में नहीं, क्योंकि इस अदायगी का जकात बनना ये तो वकील की नीयत पर मौकूफ है। वकील जकात की नीयत करेगा तो ये जकात होगी, वकील जकात की नीयत नहीं करेगा तो ये जकात भी नहीं होगी। लिहाजा मालूम हुआ वकील के इख्तियार में सिर्फ फकीर को मालिक बनाना है, और वकील ने वो काम किया, उसने भी क्या किया, फकीर को उस माल का मालिक बना दिया, बाकी उस अदायगी का जकात होना ये तो वकील के इख्तियार में ही नहीं था, लिहाजा वकील की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई। वकील को जिस काम का कहा गया था कि इस माल का मालिक फकीर को बना दो, वकील ने वो काम कर दिया, तो जब वकील ने मुवक्किल की मुखालफत नहीं की तो उस पर कोई जमान भी नहीं आएगा। ये किसके नजदीक है, साहिबैन के नजदीक। भाई देखिए भाई कहते हैं वाला हादल इख्तिलाफी, और इसी इख्तिलाफ पर है अल मामूर भी अदा इस जकाती, वो शख्स जिसको अदाए जकात का हुक्म दिया गया है यानी जिसको अदाए जकात का वकील बनाया गया है, इजा तसद्दक अलल फकीरी, जब वो उस माल को फकीर पर सदका कर दे, बादमा अद्दल आमिरु बिनफ्सिही, बाद उसके के वो जो आमिर है वो जो हुक्म देने वाला है यानी वो जो मुवक्किल है, बाद इसके के जब उस मुवक्किल ने खुद वो अदा कर दी, उसने खुद वो जकात अदा कर दी, तो इसमें भी इख्तिलाफ है। मुवक्किल ने वकील को माल दिया कि जाओ जाकर मेरी तरफ से जकात अदा कर दो, वकील वो माल लेकर चला गया, और इधर मुवक्किल ने खुद भी जकात अदा कर दी, अब वकील ने जाकर जकात अदा की तो वो तो जकात न हुई, तो इमाम साहब के नजदीक जमान आएगा और साहिबैन के नजदीक जमान नहीं आएगा। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वाला हाद अल इख्तिलाफी, और इसी इख्तिलाफ पर है अल मामूर भी अदा इस जकाती, वो शख्स जिसको अदाए जकात का हुक्म दिया गया, इजा तसद्दका अलल फकीरी, जब वो फकीर पर वो माल सदका कर दे, बादमा अदल आमिरु बिनफ्सिही, बाद उसके के जब वो आमिर खुद भी अदा कर चुका है, लहू मा, साहिबैन की दलील यह है कि अन्नहू मामूरुन बित्तमलीक मिनल फकीरी, कि जो वकील है इसको तो फकीर को मालिक बनाने का हुक्म दिया गया है। याद रखो भाई मल्लक युमल्लिकु तमलीक, भाई इसका माना है दूसरे को मालिक बनाना, और इस तमलीक का सिला मीन आता है, जिसको मालिक बनाया जाता है उस पर मीन दाखिल करते हैं। जैसे मैंने एक चीज का मालिक अमर को बना दिया तो मैं कहूंगा मल्लक तू मिन अमरिन, मैंने अमर को मालिक बना दिया, तो तमलीक का सिला क्या आता है मीन, और मीन उस शख्स पर दाखिल होता है जिसको मालिक बनाया गया है, तो यहां पर भी तमलीक का सिला मीन आ रहा है, और मीन किस पर दाखिल है, मीन अल फकीर, फकीर को उस जकात का या उस माल का मालिक बनाया जा रहा है। तो कहते हैं लहू मा, साहिबैन की दलील यह है कि अन्नहू मामूरुन बित्तमलीक मिनल फकीरी, कि ये जो वकील है इसको फकीर को मालिक बनाने का हुक्म दिया गया है, वकद अता बिही, और तहकीक ये इस हुक्म को बजा लाया, इसने इस हुक्म को पूरा कर दिया, फला यजमनु लिल मुवक्किली, लिहाजा वकील जो है मुवक्किल के लिए जामिन नहीं होगा, वकील की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, वकील को सिर्फ इतना कहा गया था कि ये इस माल को बतौर जकात के अदा कर दो यानी फकीर को इस माल का मालिक बना दो, और उसने फकीर को उस माल का मालिक बना दिया, जो कोताही हुई है वो वकील की तरफ से हुई है, जब उसने अपना माल वकील को बतौर जकात की अदायगी के दे दिया था तो फिर मुवक्किल ने खुद क्यों जकात अदा की, तो कोताही किसकी तरफ से है, मुवक्किल की तरफ से है, वकील की तरफ से नहीं, जब वकील की तरफ से कोताही नहीं है तो वकील पर जमान भी नहीं आएगा। तो कहते हैं फला यजमनु लिल मुवक्किली, लिहाजा ये जो वकील है ये मुवक्किल के लिए जामिन नहीं होगा, वहाजा, और ये इस वजह से। अब बतला रहे हैं कि जमान क्यों नहीं आएगा वकील पर, तो आपको बतलाएंगे वजह ये कि वकील के इख्तियार में सिर्फ इतना था कि वो इस माल का मालिक फकीर को बना दे, और उसने अपना काम कर दिया, उसने फकीर को इस माल का मालिक बना दिया, बाकी इस अदायगी का जकात होना कि ये अदायगी जकात बन जाए ये तो वकील के इख्तियार में ही नहीं है, इसका दारोमदार तो वकील की नीयत पर है, वकील उसकी नीयत करेगा तो जकात होगी, वकील नीयत नहीं करेगा तो जकात भी नहीं होगी, और वकील ने तो इधर खुद ही जकात अदा कर दी, और जकात तो दोबारा अदा नहीं होती, लिहाजा वकील जो अदा करेगा वो जकात न हुई, लेकिन बहरहाल वकील की इसमें कोई कोताही नहीं, उसके इख्तियार में सिर्फ इतना था कि वो फकीर को मालिक बना दे और उसने अपना काम कर दिया। باقی اس ادائیگی کا زکات بننا یہ اس کے اختیار میں نہیں کیونکہ اس کا تعلق تو موکل کی نیت سے ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہادا اور یہ وکیل پر زمان کا نہ آنا اس لیے ہے لئن فی وسعہ تملیکا, اس لیے کیونکہ وکیل کی گنجائش میں مالک بنانا ہے کہ وہ فقیر کو مالک بنا دے. لا وقوعہ زکاتا, اس کا زکات ہو کر واقع ہونا یہ اس وکیل کی گنجائش میں اس وکیل کے اختیار میں نہیں ہے بھائی. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے, کہتے ہیں وہادا اور یہ وکیل پر زمان کا نہ آنا یہ اس وجہ سے ہے لئن فی وسعہ تملیک لا وقوعہ زکاتا, اس لیے کیونکہ وکیل کی گنجائش میں التملیک فقیر کو مالک بنانا ہے. لا وقوعہ زکاتا, اس تملیک کا زکات ہو کر واقع ہونا یہ اس کی گنجائش میں نہیں ہے بھائی. لتعلقہ بنیت الموکلی, اس لیے کیونکہ اس کا تعلق موکل کی نیت سے ہے, موکل کی نیت پر اس بات کا دار و مدار ہے کہ یہ تملیک زکات بن جائے, وکیل کے اختیار میں یہ نہیں ہے. کہتے ہیں لتعلقہ بنیت الموکلی, اس وجہ سے کہ اس کا تعلق موکل کی نیت سے ہے. وانما یطلب منہ, اور وکیل سے تو اسی چیز کو طلب کیا گیا, ما فی وسعہ جو اس کی گنجائش میں ہے, وکیل سے تو اسی چیز کو طلب کیا جا سکتا ہے جو اس کی گنجائش میں ہو, اور جو چیز وکیل کے گنجائش میں اور اختیار میں ہی نہیں اس کا وکیل سے مطالبہ بھی نہیں ہو سکتا. تو وکیل کی گنجائش میں تھا فقیر کو مالک بنانا اور اس نے وہ کام کر دیا, اور وکیل کی گنجائش میں اور اختیار میں نہیں تھا کہ یہ تملیک زکات بن جائے, یہ تملیک زکات ہو کر واقع ہو جائے, یہ اس وکیل کی گنجائش اور اختیار میں نہیں تھا, لہذا وکیل سے اس کا مطالبہ بھی نہیں. جب وکیل سے اس کا مطالبہ ہی نہیں تو معلوم ہوا وکیل نے کوئی مخالفت کی ہی نہیں, اس سے صرف یہ مطالبہ تھا کہ فقیر کو اس مال کا مالک بنا دو, اور اس نے وہ کام پورا کر دیا. بات سمجھ میں آ گئے. تو کہتے ہیں وہ ان نما یطلب منہما فی وسعہ, اور وکیل سے تو اسی چیز کا مطالبہ ہو سکتا ہے جو اس کی گنجائش میں ہو, لہذا وکیل نے کوئی مخالفت نہیں کی, موکل کی بھائی. وسار کل مامور بھی ضب ہی دم الحساری, اور یہ شخص جس کو زکات کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا یہ اسی شخص کی طرح ہو گیا جس کو دم احسار کے ذبح کا حکم دیا گیا ہو. بھائی احسار, بھائی احسارا یحسر, احسار کا معنی ہے روکنا اور قید کرنا. آپ کتاب الحج کے اندر پڑھ چکے ہیں بھائی کہ جب کوئی شخص حج پر جاتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے, اور یاد رکھو احرام ان دو کپڑوں کا نام نہیں ہے بلکہ احرام اس حالت کا نام ہے جس میں انسان پر بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں. مثلا وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا, وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا, وہ خوشبو نہیں لگا سکتا, وہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا. اور انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جو مرد حالت احرام میں ہو وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا, تو اسے دو چادریں پہننی پڑتی ہیں. تو ان چادروں کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں احرام یہ چادریں نہیں ہیں بلکہ احرام اس شخص کی اس حالت کا نام ہے. تو جب ایک شخص حج پر جاتا ہے تو احرام کی نیت کر لیتا ہے, اور جب احرام کی نیت کر لیتا ہے اس کے بعد اس پر یہ ساری پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں. وہ نہ ناخن کاٹ سکتا ہے, نہ بال کاٹ سکتا ہے, نہ خوشبو لگا سکتا ہے, نہ بیوی کے قریب جا سکتا ہے, نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے. تو اس حالت کو احرام کہتے ہیں بھائی. اور پھر یاد رکھو جب ایک شخص حج پر جا رہا ہے اور اس نے احرام کی نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں, لیکن درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ اب یہ شخص حج پر نہیں جا سکتا, ورنہ ویسے تو یہ حج پر جاتا, وہاں حج کے افعال کرتا, اور پھر جب حج کے افعال کر لیتا تو اس کے بعد پھر یہ احرام ختم ہوتا ہے اور بال کٹوائے جاتے ہیں اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر درمیان میں رکاوٹ آ گئی, اب ایک شخص جا ہی نہیں سکتا حج پر, تو اس کو محصر کہتے ہیں. احصار یحصر احصار کا معنی ہے بند کرنا اور روکنا, تو یہ شخص بھی محصر ہے, یعنی اس کو حج سے روک دیا گیا ہے, کوئی رکاوٹ آ گئی ہے. مثلا راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے, اب کوئی بھی قافلہ آگے جا ہی نہیں رہا, تو یہ شخص کیا ہو گیا؟ محصر. اور یہ حالت احرام میں ہے, اب یہ اپنا احرام کیسے اتارے, اپنے احرام کی پابندیاں کیسے ختم کرے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے حرم کے اندر کوئی قربانی کروا دے, یعنی ایک دم دے دے. دم کا کیا معنی؟ खून भाई यानी कुर्बानी एक जानवर की इसको करना पड़ेगी। ये वहां पर जब कुर्बानी करवा देगा, मसलन किसी को पैगाम भिजवा दिया कि मेरी तरफ से फला तारीख को कुर्बानी कर देना, और उसकी तरफ से वहां उस जानवर की कुर्बानी कर दी जाएगी, तो अब ये एहराम उतार सकता है, अब इस पर से एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। तो ये जो मुहसर है इसको हराम में कुर्बानी करवाना पड़ेगी, फिर ही ये एहराम से निकल सकता है। हासिल कलाम ये कि जब एक शख्स एहराम की नीयत कर ले और एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएं, तो अब इस एहराम की पाबंदियों से निकलने की सिर्फ दो ही सूरतें हैं। या तो ये शख्स वह इबादत पूरी करे, यानी हज का एहराम बांधा है, जाकर हज के तमाम अफाल सर अंजाम दे दे और फिर उसके बाद बाल कटवाकर एहराम की पाबंदियों से निकल जाए। और दूसरी सूरत यह है, अगर वह हज पर नहीं जा सकता तो फिर इस एहराम से निकलने की सूरत यह है कि यह शख्स मक्का में हरम के अंदर एक जानवर की कुर्बानी करवा दे। इसको दम एहसार कहते हैं, इसको दम एहसार कहते हैं। तो जब इस जानवर की कुर्बानी वहां पर कर दी जाएगी तो फिर उसके बाद यह शख्स, ये जो मुहसर है, यह एहराम की पाबंदियों से निकल सकता है। बात समझ में आ गई। अब सूरत यह है, एक आदमी हज पर जा रहा था और उसने एहराम की नियत कर ली है और एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई और फिर कोई रुकावट आ गई, अब यह आगे हज पर नहीं जा सकता। इसने पैगाम भिजवाया किसी आदमी को कि मक्का में मेरी तरफ से एक जानवर की कुर्बानी कर दे, चुनाचे वो पैगाम इसने भिजवा दिया, लेकिन इधर वो जो रुकावट थी वो रुकावट खत्म हो गई और ये शख्स हज तक पहुंच गया। तो ये वहां पर हज के अफाल सर अंजाम देता है और फिर उसके बाद ये हलाल हो जाता है, यानी ये सर के बाल कटवा कर एहराम की पाबंदियों से निकल जाता है। तो जब इस शख्स ने हज कर लिया और फिर एहराम से निकल गया, तो अब एहराम से निकलने के लिए दम यानी कुर्बानी की जरूरत न रही। लेकिन इधर इसने जिसको जानवर की कुर्बानी के लिए वकील बनाया था, उसने इस मुवक्किल के हज करने के बाद मुवक्किल की तरफ से कुर्बानी कर दी, मुवक्किल का एहसार खत्म हो गया, वो खुद ही हज करने चला गया। जब उसने हज के अफाल कर लिए और सर के बाल कटवाकर एहराम की पाबंदियों से निकल गया, तो अब तो दम एहसार की कोई हाजत न रही। लेकिन उसके बावजूद वो जो इसका वकील था, उसने उस जानवर की कुर्बानी कर दी। तो याद रखो, इस सूरत में वकील की यह कुर्बानी दम एहसार होकर वाकई नहीं हुई, क्योंकि ये शख्स तो मुहसर रहा ही नहीं, इसने तो खुद आकर हज कर लिया, तो वकील को तो उसने दम एहसार की कुर्बानी का हुक्म दिया था, लिहाजा वकील की यह कुर्बानी दम एहसार होकर वाकई न हुई, क्योंकि एहसार तो खत्म हो चुका और मुवक्किल हज करके हराम से निकला है। तो वकील की यह कुर्बानी अगरचे दम एहसार होकर वाकई नहीं हुई, मगर फिर भी इस वकील पर इस कुर्बानी का जमान नहीं आएगा भाई, इस कुर्बानी का जमान नहीं आएगा। तो साहिबैन फरमाते हैं कि यह शख्स जिसको दम एहसार के जिबा का हुक्म दिया गया था, जैसे इस पर जमान नहीं आएगा, इसी तरह मामूर भी अदाए जकात जो है इस पर भी जमान नहीं आएगा। तो साहिबैन इस मामूर भी अदाए जकात जो है इसको कयास करते हैं मामूर भी ज़बह दमिल एहसार पर। वो शख्स जिसको दम एहसार के जिबा का हुक्म दिया गया है, और जैसे वो मामूर भी ज़बह दमिल एहसार वाला, वो आमिर के हज करने के बाद भी अगर वो उस हैवान को जिबा कर देगा तो उस पर जमान नहीं आता। तो यहां पर भी मामूर भी अदा इस जकात जो है, अगर वो आमिर की अदा जकात के बाद भी ये जकात अदा करेगा तो इस पर जमान नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं वसार कल मामूरी भी जबह दमिल एहसारी, और यह मामूर भी अदा इस जकात हो गया उस शख्स की तरह, वो जो मामूर भी जबह दमिल एहसार है, यानी जिसको दम एहसार के जिबा का हुक्म दिया गया है। इदा जबह, जब यह मामूर जिबा करता है, बाद अमा जालल एहसारु, बाद उसके के जब एहसार खत्म हो गया था, वो रुकावट खत्म हो गई थी, वह हज जल आमिरू, और आमिर ने हज कर लिया था, फिर उसके बाद भी ये जानवर जिबा करेगा तो इस पर जमान नहीं आएगा। तो कहते हैं इजा ज़बहा, जब ये मामूर ज़िबा कर लेता है, बाद अमा ज़ाल अल इहसार व हज अल आमिर, बाद उसके कि जब वो रुकावट खत्म हो गई थी और आमिर ने हज कर लिया था, तो भी लम यज़मल अल मामूर अलिमा औला, मामूर ज़ामिन नहीं होगा चाहे उसको आमिर के हज करने का इलम हो या इलम ना हो। इलम हो फिर भी वो ज़िबा कर देगा जानवर को तो उस पर ज़मान नहीं आएगा भाई, क्योंकि उसको जो हुक्म दिया गया था वो उसने कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक साहिबैन की दलील थी। अब आगे इमाम साहब की दलील आ रही है। वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु मामूरुन बि अदाए ज़कती, कि ये जो वकील था इसको तो अदाए ज़कात का हुक्म दिया गया था। वल मुअद्दा लम यक़ा ज़कातन, और वो जो इस वकील ने अदायगी की है वो तो ज़कात होकर वाकई नहीं हुई। फसारा मुखालिफन, तो ये जो वकील है ये मुवक्किल की मुखालफत करने वाला हो गया। वहाजा, और ये इस वजह से लिअन अल मकसूद मिन अल अमरी, इसलिए क्योंकि इस हुक्म के जरिए जो मकसूद है इखराज नफ्सी ही अन उहदतिल वाजिबी, वो अपने आप को निकालना है वाजिब की जिम्मेदारी से। भाई इधर देखिए, इमाम साहब फरमाते हैं कि आमिर ने मुअक्किल ने जब खुद ज़कात अदा कर दी और फिर उसके बाद वकील अदा कर देता है तो वकील ने आमिर की मुखालफत की है। भाई वकील ने आमिर की मुखालफत की है इसलिए क्योंकि आमिर ने जिसको ज़कात के अदा करने का हुक्म दिया था उसका मकसद यह था कि मेरे ऊपर से वाजिब साकित हो जाए, मेरी तरफ से ज़कात अदा हो जाए जी। मेरे ऊपर ज़कात वाजिब है, मेरे ऊपर से यह वाजिब साकित हो जाए, खत्म हो जाए। और वकील ने जब माल फकीर को दिया तो ये वाजिब तो पहले ही साकित हो चुका था, तो वकील की अदायगी से मकसद हासिल न हुआ। जब मकसद हासिल न हुआ तो मालूम हुआ वकील ने मुअक्किल की मुखालफत की है। भाई तो कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से ले अनल मकसूद अमीन अल अमरी, इसलिए क्योंकि आमिर की तरफ से जो ये हुक्म था जकात की अदायगी का, इसका मकसद जो है इखराज नफ्स ही अन उहदतिल वाजिबी, वो अपने आप को वाजिब की जिम्मेदारी से निकालना था। ले अन जाहिरा, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है कि अन्नहु ला यल्तज़िम उज़्ज़रारा, कि वह अपने ऊपर नुकसान को लाजिम नहीं करेगा। इल्ला लिदफ़ ज़ररी, मगर ज़रर को दूर करने के लिए। भाई इधर देखिए, जब कोई शख्स ज़कात अदा करता है तो देखो उसको नुकसान हो रहा है, उसका माल कम हो रहा है। ज़कात अदा करने में क्या है, दुनियावी एतबार से ज़रर है, उखरवी तो फायदा है लेकिन दुनियावी ज़रर है कि उसका माल कम हो रहा है। लेकिन अगर ज़कात अदा नहीं करेगा तो उखरवी ज़रर है कि वाजिब उसके जिम्मे में बाकी रहेगा। लिहाजा ये जो आमिर है ये वकील को कह रहा है जाकर मेरी तरफ से ज़कात अदा कर दो, तो जाहिर यही है कि जो आमिर यानी मुअक्किल दुनियावी नुकसान को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है वो उखरवी ज़रर को दूर करने के लिए है। ये दुनियावी नुकसान वो क्यों बर्दाश्त कर रहा है, आखिरत के नुकसान को दूर करने के लिए, वरना तो आखिरत में मुआखजा होगा, उसकी पकड़ होगी। और मुझे बताइए, वकील जब इसकी तरफ से माल अदा करता है तो क्या इस अदायगी की वजह से जो नुकसान हुआ उस नुकसान की वजह से क्या उखरवी नुकसान दूर हुआ जी? नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो, फिर सुनो। मुवक्किल ने वकील को कहा कि ये पैसे लो और जाकर मेरी तरफ से ज़कात अदा कर दो, और फिर वकील के जाने के बाद मुवक्किल ने खुद ही ज़कात अदा कर दी, तो अब वकील जाकर वो ज़कात अदा करता है तो वकील के ज़कात अदा करने से मुअक्किल का माली नुकसान हुआ, उसको माली नुकसान हुआ यानी दुनियावी नुकसान हुआ, और दुनियावी नुकसान को तो वो इसलिए बर्दाश्त कर रहा था उखरवी नुकसान से बचने के लिए। और मुझे बताइए, वकील की अदायगी से कोई उखरवी नुकसान दूर हुआ? नहीं, उखरवी नुकसान तो पहले ही दूर हो चुका है, ये खुद ही ज़कात अदा कर चुका है, तो इसके जिम्मे से वाजिब साकित हो चुका है। भाई बात समझ में आ गई। मालूम हुआ वकील की अदायगी की वजह से उखरवी नुकसान को दूर करने वाला मकसद हासिल नहीं, लिहाजा वकील ने आमिर की मुखालफत कर दी तो उस पर जमान आएगा। भाई देखिए साहिब हिदाया और बेहतरीन अल्फाज में इसको जिक्र फरमाएंगे, कहते हैं लिअन्ना जाहिरा, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है अन्नहु ला यल्तजिमु ज़रारा, कि जो आमिर है ये अपने ऊपर नुकसान को लाजिम नहीं कर रहा, यानी दुनियावी नुकसान को लाजिम नहीं कर रहा, इल्ला लिदफ़ई ज़ररी, मगर उखरवी ज़रर को दूर करने के लिए, उखरवी नुकसान को दूर करने के लिए। वहां दल मकसूद हसल अभी अदाई, और ये उखरवी नुकसान को दूर करने का जो मकसद है ये हासिल हो गया भी अदाई, आमिर के खुद अदा करने से, मुवक्किल के खुद अदा करने से। तो कहते हैं वहाद अल मकसूद हसल भी अदाई, और यह मकसूद तो खुद आमिर की अदायगी से हासिल हो गया। वह अरिया अदा उल मामूर अन हो, और मामूर की अदायगी तो इससे खाली हो गई, यानी वकील की अदायगी से तो इस नुकसान को दूर करने से खाली हो गई। तो कहते हैं वार या अदा उल मामूर अन हो, और मामूर की अदायगी तो इस दफे जरर से या इस मकसूद से खाली हो गई। फसार माजूल अन, तो वकील जो है माजूल हो गया, जब मुवक्किल ने खुद जकात अदा कर दी तो वकील माजूल हो गया अदाए जकात से। और ये अजल अजल हुक्मी है, अजल हुक्मी किसे कहते थे, दूसरी चीज के जिमन में जो अजल आ जाए उसको अजल हुक्मी कहते हैं, और एक अजल कस्दी होता है बाकायदा इरादे से किसी को माजूल करना, तवज्जो है। तो यहां पर भी जब मुअक्किल ने खुद ही ज़कात अदा कर दी तो वकील खुद ब खुद माजूल हो गया, तवज्जो है। मुअक्किल ने अपनी जुबान के जरिए वकील को माजूल नहीं किया है, बल्कि अपने फेल के जरिए वकील को माजूल किया है। तो यह अजल हुक्मी हुआ, और अजल हुक्मी के अंदर आप पढ़ चुके हैं वकील को इलम होना जरूरी नहीं है। भाई अजल कस्दी में इलम होना जरूरी है, अजल हुक्मी में इलम होना जरूरी नहीं। लिहाजा जब मुअक्किल ने खुद ज़कात अदा कर दी तो वकील माजूल हो गया, और वकील माजूल हुआ और कौन सा माजूल है, माजूल हुक्मी है, लिहाजा उसको इलम होना भी जरूरी नहीं। उसके बाद भी वकील अगर अदा करता है तो वकील पर जमान आएगा इमाम साहेब के नजदीक। तो कहते हैं फसारा माजूलन, तो वो मामूर जो है वो माजूल हो गया, अलिम अलम या आलम, चाहे उसको इलम हो या इलम ना हो, ले अनहू अजल हुक्मी, इसलिए क्योंकि यह अजल हुक्मी है। वह अम्मा दमुल एहसारी, अब यहां से साहिबैन के कियास का जवाब दे रहे हैं। साहिबैन ने यह मामूर भी अदा इस जकात को कियास किया था मामूर भी जबह दमिल एहसार पर, मामूर भी जबह दमिल एहसार पर कियास किया था, तो उसका जवाब दे रहे हैं और दो जवाब देंगे, एक जवाब इनकारी और एक जवाब तस्लीमी। जवाब इनकारी ये, साहिबैन ने क्या कहा था कि यह मामूर भी अदा इस जकात किसकी तरह है, मामूर भी जबह दमिल एहसार की तरह है भाई, और जैसे मामूर भी जबह दमिल एहसार जो है वो आमिर के हज करने के बाद भी अगर उस जानवर को जिबा करता है तो उस पर जमान नहीं आएगा, चाहे उस मामूर भी जबह दमिल एहसार को इलम हो या इलम न हो। इसी तरह ये मामूर भी अदाए जकात जो है ये भी अगर मुअक्किल के अदाए जकात के बाद ये खुद जकात अदा करता है तो इस मामूर भी अदाए जकात पर भी जमान नहीं आएगा, चाहे इसको मुअक्किल की अदाए जकात का इलम हो या इलम न हो, किसी सूरत में इस पर जमान नहीं आएगा। तो साहिब हिदाया इमाम साहिब की तरफ से साहिबैन को जवाब दे रहे हैं, दो जवाब देंगे, एक जवाब इनकारी और एक जवाब तस्लीमी। पहला जवाब इनकारी है कि हमें आपकी बात तस्लीम नहीं है कि मामूर भी जबह दमिल एहसार जो है उस पर जमान नहीं आएगा, हमें यह आपकी ये बात तस्लीम नहीं है कि मामूर भी जबह दमिल एहसार पर जमान नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर भी इमाम साहिब के नजदीक उस पर जमान आएगा। लिहाजा अगर आप मामूर भी अदा ज़कात जो है इसको मामूर भी ज़बह दमिल एहसार पर कयास भी कर लें फिर भी आपका मुद्दा साबित नहीं होता, क्योंकि जैसे मामूर भी अदा ज़कात के अंदर इमाम साहब के नजदीक जमान आता है, इसी तरह मामूर भी ज़बह दमिल एहसार के अंदर भी इमाम साहब के नजदीक जमान आता है। भाई बात समझ में आ गई, तो पहला जवाब इनकारी दिया कि हमें आपकी यह बात तस्लीम ही नहीं है कि मामूर भी ज़बह दमिल एहसार पर जमान नहीं आएगा, और दूसरा जवाब तस्लीमी दिया कि अगर हम आपकी बात तस्लीम कर लें कि मामूर भी जब दमिल एहसार जो है उस पर जमान किसी सूरत नहीं आता, चाहे उसे इलम हो या इलम ना हो, लेकिन मामूर भी अदाई जकात पर जमान आएगा, तो इस सूरत में मालूम हुआ इमाम साहेब ने दोनों में फर्क किया है, इमाम साहेब ने दोनों में फर्क किया है। तो अब वो फिर आगे बयान करेंगे। तो कहते हैं अम्मा दम उल एहसारी, और बाकी दम एहसार जो है फकद कीला, तो तहकीक कहा गया है हुआ अला हाद अल इख्तिलाफी, कि वो भी इसी इख्तिलाफ पर है, तो वो भी इसी इख्तिलाफ पर है, यानी उसमें भी इमाम साहब इसी तरह साहिबैन से इख्तिलाफ करते हैं। वकीला, और कहा गया है बैनहुमा फर्कुन, कि इन दोनों में फर्क है। ये तस्लीमी जवाब दे रहे हैं कि मामूर भी अदाए जकात पर तो जमान आएगा इमाम साहब के नजदीक, लेकिन मामूर भी जब दमिल एहसार पर जमान नहीं आएगा इमाम साहब के नजदीक, तो दोनों में फर्क है। अब वो फर्क बयान करेंगे। तो कहते हैं वकीला बैन हुमा फर्कुन, और कहा गया है कि दोनों के दरमियान फर्क है। वह वजह हु, और वजह उसकी यह है कि अन्न दम अलै सभी वाजिबिन अलैही, कि दम जो है उस पर वाजिब नहीं है। यहां से फर्क बयान करेंगे कि एक मामूर भी अदाई जकात है, एक मामूर भी जबही दमिल एहसार है, दोनों में फर्क है। जब दोनों में फर्क है तो साहिबैन का एक को दूसरे पर कयास करना सही नहीं है भाई। और फर्क कैसे है? कहते हैं देखो फर्क यह है कि अदाए जकात तो वाजिब है, उसको तो हर हाल में अदा करना है, और दम एहसार जो है वो वाजिब नहीं है, वो अभी तक वाजिब नहीं। वो कब वाजिब होगा? जब हज ना कर सके, और हो सकता है अगर यह आदमी सबर कर ले और कुछ अरसे के बाद वो रुकावट खत्म हो जाए तो यह खुद जाकर हज कर सकता है। तो मालूम हुआ इस पर अभी दम एहसार वाजिब ही नहीं हुआ। तो जकात तो वाजिब हो चुकी है, वो तो हर हाल में अदा करनी ही करनी है, और दम एहसार तो अभी वाजिब ही नहीं हुआ, लिहाजा दोनों में फर्क आ गया। जब फर्क आ गया तो आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते। तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है बैनहुमा फर्क, उनके इन दोनों में फर्क है। ववजहुहु, और फर्क की वजह यह है कि अन्न दम अलैसा बिवाजिबिन अलैही, कि दम एहसार जो है उस आमिर पर अभी वाजिब ही नहीं है। फइन्नहु युमकिनुहु अन यस्बिरा, इसलिए क्योंकि इस शख्स के लिए मुमकिन है कि यह सबर कर ले, हत्ता यजूल अल एहसारु, यहां तक कि वह रुकावट जायल हो जाए, खत्म हो जाए। वफी मसअलतिन अल अदाउ वाजिबुन, और हमारे मसले में यानी अदाए जकात के मसले में अदा वाजिब है, एहसार के मसले में दम अभी वाजिब ही नहीं। हो सकता है इंतजार करे तो वो रुकावट खत्म हो जाए। तो कहते हैं वफी मसअलतिन अल अदा वाजिबुन, और हमारे मसले में यानी जकात के मसले में अदा वाजिब है। फअतुबिर अल इसकात मकसूदन फीही, लिहाजा इस अदाए जकात के अंदर इसकात मकसूद है। अदाए जकात के अंदर वाजिब का साकित करना मकसूद है, क्योंकि जकात कतई तौर पर वाजिब हो चुकी है, और जबकि दम एहसार तो अभी वाजिब ही नहीं हुआ, लिहाजा जकात की अदायगी के अंदर तो वाजिब को साकित करना ही मकसूद है, क्योंकि जकात वाजिब हो चुकी है, और दम एहसार के मसले में तो दम एहसार अभी वाजिब ही नहीं हुआ, तो वहां वाजिब को साकित करना अभी मकसूद ही नहीं है, तो दोनों में फर्क है, लिहाजा आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते। फिर तर्जमा देख लीजिए। तो कहते हैं वफी मसअलतिन अल अदा वाजिबुन, और हमारे मसले के अंदर अदा वाजिब है, यानी जकात के मसले में अदा वाजिब है। फअतुबिर अल इसकात मकसूदन फीही, लिहाजा इस अदा के अंदर वाजिब को साकित करना मकसूद है। दून दमिल एहसारी, न के दम एहसार में, क्योंकि वह अभी वाजिब ही नहीं, तो वहां वाजिब को साकित करना भी मकसूद नहीं है, तो दोनों में फर्क हो गया। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, قال واذا اذن احد المتفاوضين لصاحبه ان يشتري جاريه فيطاها ففعل فهي له بغير شيء عند ابي حنيفه رحمه الله وقال رحمهما الله تعالى يرجع عليه بنصف الثمن। भाई सूरत मसला ये कि दो आदमी जिन्होंने आपस में शिरकत मुफावजा का अकद किया हुआ है, आपने पढ़ा है कि शिरकत मुफावजा के अंदर दोनों शरीकों का माल भी बराबर होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के वकील भी होते हैं और कफील भी होते हैं। तो अब दो आदमियों ने आपस में शिरकत मुफावजा का अकद किया हुआ है और दोनों शरीकों में से एक शरीक दूसरे से कहता है कि तुम्हें इजाजत है कि तुम कोई बांदी खरीद कर उसके साथ वती कर सकते हो। चुनाचे जब दूसरे को इजाजत मिल गई तो उसने माले मुश्तरका के जरिए एक बांदी को खरीदा और उसके साथ वती कर ली। तो इमाम साहब फरमाते हैं यह बांदी इसी शख्स की हो गई और इस पर कोई जमान वगैरह नहीं आएगा इसके समन का। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि यह बांदी इसने माले मुश्तरका से खरीदी है, लिहाजा इस शख्स पर निस्व समन का जमान आएगा जो उसे अपने साथी को अदा करने होंगे। बात समझ में आ गई। देखिए भाई, काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, व इदा अदीना अहदुल मुतफाविज़ैनी लिसाहिबिही, और जब दो अक़्द मुफावजा करने वालों में से एक ने अपने साथी को इजाजत दे दी, अय्यश्तरिया जारियतन फयतअहा, कि वो एक बांदी को खरीद सकता है और उससे वती कर सकता है, फाफा आला, तो दूसरे ने ऐसा कर लिया यानी मुश्तरका माल से बांदी खरीदी और उसके साथ सोहबत कर ली, तो कहते हैं फहिया लहू बिगैरी शैइन, तो ये बांदी उसी की है बगैर किसी चीज के बदले में। इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह इमाम साहिब के नजदीक, वकाला रहमहुमल्लाह ताला, और साहिबैन फरमाते हैं यरजिउ अलैहि बिनिस्फ़ समनी, कि वो उसका शरीक जो है इस पर निस्फ समन के अंदर रुजू करेगा, क्योंकि ये बांदी उसने खास अपने लिए खरीदी और अदायगी माले मुश्तरका से की है, और जब भी दोनों शरीकों में से खास तौर पर अपने लिए कोई चीज खरीदता है तो दूसरा शरीक फिर उसके निस्व समन में उस पर रुजू कर सकता है। भाई तो ये माना है यरजिउ अलैहि बिनिस्फ समनी, तो वो इजाजत देने वाला जो है वो इस पर निस्फ समन के अंदर रुजू करेगा, लिअन्नहु अद्दा दैनन अलैहि खासतन, इसलिए क्योंकि इस शरीक ने ऐसा दैन अदा किया है जो खास तौर पर इसके ऊपर था, ये दैन उसने अदा किया है मिन मालिम मुश्तरकिन, माले मुश्तरका में से। तवज्जो है, फिर तर्जमा देख लीजिए, लिअन्नहु अद्दा दैनन अलैहि खासतम मिन मालिम मुश्तरकिन, इसलिए क्योंकि ये शख्स जो है इसने माले मुश्तरका में से ऐसा दैन अदा किया है जो खास तौर पर इसी के ऊपर था, फयरजु अलैहि साहिबुहु बिनसीबिही, लिहाजा इसका साथी इस पर रुजू करेगा अपने हिस्से में, कमाफी शिरा इत्तामी वल किस्वती, जैसे कि गंदुम और कपड़ों के खरीदने में। भाई आप तफसील पीछे पढ़ चुके हैं, भाई साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि जब दो शरीक आपस में शिरकत मुफावजा कर लें तो जो भी बैउ शिरा वो करेंगे वो इश्तराक के तरीके पर होगी, लेकिन अपने घर वालों का गल्ला और अपने और घर वालों के जो कपड़े हैं वो इससे मुस्तस्ना हैं। लिहाजा अपने घर वालों के लिए कोई गल्ला खरीदता है या कपड़े खरीदता है और अदायगी जो कर रहा है वो तो माले मुश्तरका से कर रहा है, तो उसका शरीक जो है इस पर निस्फ समन के अंदर रुजू करेगा, क्योंकि अदायगी इसने माले मुश्तरका में से की है। भाई तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे अपने घर वालों के लिए गल्ला या कपड़े वगैरह खरीदता है तो वो खास तौर पर अपने लिए खरीद रहा है और अदायगी माले मुश्तरका से कर रहा है और वहां पर उसका शरीक निसफ के अंदर उस पर रुजू करता है। तो यहां पर भी इसी तरह ये जो इस शख्स ने बांदी खरीदी है ये इसने अपने लिए खरीदी है और अदायगी माले मुश्तरका से की है, लिहाजा इसका शरीक निसफ समन में इस पर रुजू करेगा। भाई ये माना है कमाफी शिरा इत्तामी वल किस्वती, जैसे कि गल्ले और कपड़ों की खरीदारी में है कि उसका शरीक निसफ में उस पर रुजू करता है, वहाजा, और ये इस वजह से, लिअन्न अल मिल्क वाक़िउन लहू खासतन, इसलिए क्योंकि इस बांदी की मिल्कियत खास तौर पर इसी आदमी के लिए वाकई हुई है। ये जो बांदी इसने खरीदी माले मुश्तरका के जरिए, इस बांदी का सिर्फ ये खरीदार ही मालिक है, शरीक मालिक नहीं, क्योंकि अगर शरीक मालिक होता, शरीक का भी इस बांदी में हिस्सा होता तो फिर तो इसके लिए सोहबत जायज ही नहीं थी बांदी के साथ। इसके लिए बांदी से सोहबत तभी जायज हो सकती है जब ये अकेला बांदी का मालिक हो।
तो साहिबैन फरमाते हैं कि इसने जब बांदी को खरीदा तो यह अकेला इस बांदी का मालिक हुआ, जब अकेला मालिक हुआ तो अब इसके लिए सोहबत जायज है, तो यह बांदी का अकेला मालिक है और जो समन इसने अदा किए हैं वह माले मुश्तरका में से अदा किए हैं, लिहाजा इसका साथी निस्फे समन में इस पर रुजू कर सकता है। भाई तो कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से ले अनल मिल का वाकउन लहू खास सतन, इसलिए क्योंकि इस बांदी की मिल्कियत खास तौर पर इसी खरीदार के लिए वाक हुई है, क्योंकि इसी वजह से तो सोहबत इसके लिए जायज है। वह समन उबी मुकाबला तिल मिल्की, और समन जो है वो तो मिल्कियत के मुकाबले में होते हैं, जब मिल्कियत इसकी तो समन भी इसी पर आने चाहिए, और यह अदा तो माले मुश्तरका में से कर रहा है और माले मुश्तरका में तो दूसरे शरीक का भी हिस्सा है, लिहाजा दूसरा शरीक निस्वे समन में इस पर रुजू करेगा। दलील समझ में आ रही है? तो कहते हैं वस्सा मनु भी मुकाबला तिल मिल की, और समन जो है वो तो मिल्कियत के मुकाबले में होते हैं, जब मिल्कियत इसकी है तो समन भी इसी पर आने चाहिए। भाई अब इमाम साहेब की दलील आ गई। इमाम साहेब फरमाते थे कि ये बांदी इसी शरीक की हो गई जिसने इसके साथ सोहबत की है, और इस पर कोई जमान नहीं आएगा, इसका शरीक निस्फे समन में इस पर रुजू नहीं कर सकता। वजह क्या? इमाम साहब फरमाते हैं कि दोनों ने अक़्दे मुफावजा किया हुआ है, और अक़्दे मुफावजा के अंदर यह तय था कि जो भी चीज दोनों खरीदेंगे वो दोनों के दरमियान मुश्तरका होगी, लिहाजा इसने जब बांदी खरीदी है तो यह बांदी भी दोनों के दरमियान मुश्तरका थी, और जब बांदी मुश्तरका थी तो फिर तो इसके लिए सोहबत जायज ही नहीं थी, लिहाजा खरीदने के बाद दूसरे शरीक की तरफ से हिबा पाया गया। दूसरे शरीक ने तो इसको इजाजत दी थी कि बांदी खरीद कर तुम उसके साथ मती कर सकते हो, तो गोया दूसरे शरीक ने यूं कहा था कि एक बांदी खरीद लो मुश्तरका तरीके पर, और फिर उसके बाद मेरा जो हिस्सा होगा वो तुम्हें हिबा है मेरी तरफ से, और फिर तुम जब पूरी बांदी के मालिक बन जाओगे तो तुम उसके साथ सोहबत कर लेना। तो साहिबैन तो यह फरमाते थे कि जब इसने बांदी खरीदी है उस वक्त से ही यह बांदी का मालिक है। इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, जब बांदी खरीदी थी तब वो मुश्तरका थी। वजह यह कि दोनों ने आपस में अक़्द मुफावजा किया हुआ है, और अक़्द मुफावजा के अंदर यह तय होता है कि जो भी चीज दोनों खरीदेंगे वो दोनों के दरमियान मुश्तरका होगी, लिहाजा यह अक़्द मुफावजा को नहीं बदल सकते, ये अक़्दे मुफावजा को नहीं बदल सकते, ये बांदी को खरीदेंगे तो वो मुश्तरका ही रहेगी और दूसरे के लिए सोहबत जायज नहीं होगी, इल्ला ये कि हिबा को माना जाए कि दूसरा शरीक अपना हिस्सा इसको हिबा कर देता है, फिर ये पूरी बांदी का मालिक बन जाएगा, फिर इसके लिए सोहबत जायज होगी, वैसे तो इसके लिए सोहबत ही जायज नहीं होती। तो लिहाजा ये जब बांदी को खरीदेगा तो ये खास तौर पर अपने लिए नहीं खरीद रहा, क्योंकि अगर खास तौर पर अपने लिए खरीदना चाहता है ये तो मुफावजा के मुक्तजा को बदल रहा है, और मुफावजा के मुक्तजा को बदलना किसी के लिए भी जायज नहीं। तो जब ये बांदी खरीदेगा तो ये बांदी मुश्तरका होगी, और जिसने इजाजत दी थी उसने जब खरीदने और वती की इजाजत दी थी गोया यूं कहा था कि एक मुश्तरका बांदी खरीद लो, फिर मेरी तरफ से मेरा हिस्सा तुम्हें हिबा हो जाएगा, तुम पूरी बांदी के मालिक बन जाओगे और फिर तुम्हारे लिए सोहबत जायज हो जाएगी, तो तुम उसके साथ सोहबत कर लेना। तो यहां बांदी के खरीदने के बाद जिमनन हिबा को मानना पड़ेगा, यहां बांदी को खरीदने के बाद जिमनन हिबा को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर वती हलाल ही नहीं हो सकती जब तक ये पूरी बांदी का मालिक ना बन जाए, और पूरी बांदी का मालिक वो सिर्फ हिबा के जरिए बन सकता है और कोई सूरत नहीं। जी। याद रखो यहां जैद के लिए पूरी बांदी की मिल्कियत चाहिए, और पूरी बांदी की मिल्कियत दूसरे शरीक की तरफ से सिर्फ हिबा के जरिए हो सकती है और कोई सूरत नहीं। हिबा के जरिए हो सकती है और कोई सूरत नहीं। अगर दूसरा शरीक अपना हिस्सा इसको बेच दे फिर भी वती हलाल नहीं होती। अमर ने जैद से क्या कहा है, एक बांदी खरीद लो फिर तो उसके साथ तुम वती कर लेना। जी। तो इमाम साहब की दलील चल रही है, इमाम साहब फरमाते हैं जब ये बांदी खरीदेगा वो तो मुश्तरका होगी, आधी बांदी का मालिक जैद है, आधी का मालिक अमर है, जैद को पूरी बांदी का मालिक तभी करार दिया जा सकता है जब अमर की तरफ से हिबा मान लिया जाए। अगर अमर की तरफ से हिबा नहीं मानेंगे तो जैद पूरी बांदी का मालिक नहीं, जब पूरी बांदी का मालिक नहीं तो उसके लिए सोहबत भी जायज नहीं होगी, और हिबा ही मानना पड़ेगा, बैअ नहीं। जैद ने बांदी खरीद ली और ये बांदी मुश्तरका है, जैद अमर से अमर का हिस्सा भी खरीद लेता है, निसब बांदी तो है ही जैद की और निसफ अमर की है और जैद अमर से उसका हिस्सा भी खरीद ले, फिर भी जैद के लिए सोहबत जायज नहीं होगी। भाई क्यों नहीं जायज? क्योंकि जैद जब अमर से निसफ हिस्सा खरीदेगा तो दोनों के दरमियान अक्त मुफावजा है, जो भी चीज खरीदेंगे उसमें दोनों शरीक होंगे, तो जो निसफ खरीदेगा उसमें फिर दोनों का इश्तराक आ जाएगा। सूरत समझ में आ रही है? लिहाजा यहां पर एक शरीक को पूरी बांदी का मालिक तभी करार दिया जा सकता है जब दूसरे की तरफ से हिबा को माना जाए। जब दूसरे की तरफ से हिबा आ गया, अब ये पूरी बांदी का मालिक बन गया, लिहाजा अब इसके लिए सोहबत जायज हो जाएगी। और जब दूसरे शरीक ने इसको अपना हिस्सा हिबा किया है तो वो इससे अब समन भी वसूल नहीं कर सकता। भाई बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह लहू, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल जारियत दखलत फी शिरकती, कि बांदी जो है वो दाखिल हुई है शिरकत के तरीके पर, यानी बांदी दोनों की मिल्कियत में शिरकत के तरीके पर दाखिल हुई है। अलल बताती कतई तौर पर, बतात भाई ये ता पर शद नहीं पढ़ना भाई, अलल बताती आखिर में भी लंबी ता है, अलल बतात, तो यहां ताकि तखफीफ के साथ है ये लफ्ज। ये यकीन और कता के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन एक शख्स कहता है अजरिबुहू बतातन, अजरिबुहू बतातन, मैं कतई तौर पर उसकी पिटाई करूंगा, यकीनी तौर पर मैं उसकी पिटाई करूंगा। तो यहां पर भी इमाम साहब की दलील चल रही है। साहिबैन तो क्या फरमाते थे? साहिबैन तो फरमाते थे कि जब एक ने दूसरे को इजाजत दे दी तो दूसरा जब बांदी खरीदेगा तो वो सारी बांदी उसी की है। इमाम साहब फरमाते हैं कतई तौर पर ये बांदी दोनों में मुश्तरका है, खरीदते हुए एक की हो ऐसा नहीं है भाई। बांदी जब खरीदेंगे तो कतई तौर पर दोनों में मुश्तरका है। लिहाजा साहिबैन का ये कहना कि जिसको इजाजत दी गई है वो खरीदेगा तो वो सारी का मालिक हो जाएगा, नहीं, बल्कि यहां जब खरीदेंगे दोनों में मुश्तरका है, फिर दूसरे की तरफ से जिमनन हिबा मानना पड़ेगा भाई। तो कहते हैं वल्लहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल जारियत दखलत फी शिरकती अलल बताती, कि बांदी जो है दोनों की मिल्कियत में दाखिल हुई है शिरकत के तरीके पर, अलल बताती कतई तौर पर, जरियन अला मुक्तजा शिरकती, मुक्तजा शिरकत पर चलते हुए। ये शिरकत है मुफावजा, इसी का तकाजा करती है कि जो भी चीज खरीदेंगे उसमें दोनों की शिरकत होगी। तो जर यन आला मुक्तजा शिरकती, शिरकत के मुक्तजा पर चलते हुए, इद हुमाला यमलिका नि तगीर हो, इसलिए क्योंकि दोनों इस बात के मालिक नहीं है कि उस शिरकत के मुक्तजा को बदल दें। दोनों शिरकत के मुक्तजा को नहीं बदल सकते। शिरकत तो क्या तकाजा करती है? जो भी चीज खरीदेंगे वो दोनों में मुश्तरका होगी। तो कहते हैं इद हुमाला यमलिका नि तगीर हो, इसलिए क्योंकि दोनों जो है इस शिरकत के मुक्तजा को बदलने के मालिक नहीं है। फअशबहा हाला अदमिल इज़्नी, तो इजाजत की जो हालत है वो मुशाबे हो गई इजाजत न होने की हालत के। भाई जब बगैर इजाजत के बांदी खरीदेंगे तो वो दोनों में मुश्तरका होगी, तो इजाजत के बाद भी खरीदेगा तो वो भी दोनों में मुश्तरका होगी। तो ये इजाजत का देना भी किस हालत की तरह हो गया? इजाजत न देने की तरह। तो ये माना है फअशबहा हाला अदमिल इज़्नी, तो ये मुशाबे हो गया इजाजत न देने की हालत के। गैर अन्नल इज़्न यतज़म्मनु हिबता नसीबिही मिन्हु, गैर अन्नल इज़्न, मगर ये कि ये जो इजाजत है यतज़म्मनु हिबता नसीबिही मिन्हु, ये मुतज़म्मिन है अपना हिस्सा उसको हिबा करने को। ये जो दूसरे ने इजाजत दी थी कि तुम एक बांदी खरीद कर उसे वती कर लो, तो ये इजाजत मुतज़म्मिन है हिबा को, मालूम हुआ खरीदने के बाद उसका हिस्सा उसकी तरफ से हिबा हो जाएगा। गैर अन्नल इज़्ना, मगर ये कि इजाजत जो है, जो दूसरे ने इजाजत दी थी कि खरीद कर बांदी से वती कर लो, गैर अन्नल इज़्ना, मगर ये कि इजाजत जो है यतज़म्मनु हिबता नसीबी ही, वो दूसरे शरीक के हिस्से के हिबा को मुतज़म्मिन है मीन हु उसकी जानिब से। इजाजत दी थी, गोया कह दिया था कि खरीद लेना और फिर मेरा हिस्सा मेरी तरफ से तुम्हें हिबा हो जाएगा। तो गैर अनल इज नयतजम मनु ही बता नसीब ही मीन हो, मगर ये कि जो इजाजत है ये दूसरे के हिस्से के हिबा को मुतजमिन है उसकी तरफ से। ले अनलवत अला यहिल्लु इल्ला बिल मिल्की, इसलिए क्योंकि वती जो है वो हलाल नहीं हो सकती मगर मिल्कियत के जरिए, कि ये पूरी बांदी का मालिक बन जाए, फिर ही वती हलाल हो सकती है। तो जब दूसरे ने इजाजत दी है खरीद लो और वती कर लेना, मालूम हुआ कहने का मतलब यह है खरीद लेना और फिर मेरी तरफ से मेरा हिस्सा तुम्हें हिबा हो जाएगा, तुम सारी के मालिक बन जाओगे, फिर तुम वती कर सकते हो। तो कहते हैं लिअन अलवत अला यहिल्लु इल्ला बिल मिल्की, इसलिए क्योंकि वती जो है वो हलाल नहीं हो सकती मगर मिल्कियत के जरिए। वला वजह इला इस बात ही बिल बैई, और कोई वजह नहीं है कि मिल्कियत को साबित किया जाए बैअ के जरिए, कोई वजह नहीं है कि मिल्कियत को साबित किया जाए बैअ के जरिए। साहिबैन तो क्या फरमाते थे, जब दूसरे ने इजाजत दे दी है तो जब यह माले मुश्तरका से बांदी खरीदेगा भी तो यह अकेला ही उसका मालिक बनेगा। इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, दूसरे ने बेशक इजाजत दे दी है लेकिन ये खरीदेगा तो बांदी मुश्तरका ही होगी, क्योंकि ये मुफावजा का मुक्तजा है, मुफावजा इसी का तकाजा करता है और ये मुफावजा के मुक्तजा को बदल नहीं सकते भाई। तो कहते हैं वला वजह इला इस बात ही बिल बैई, और कोई वजह नहीं है कि इस वती के हलाल होने को बैअ के जरिए साबित किया जाए। तो इस बात ही कि हां जमीर या तो वती के हलाल होने की तरफ राजे कर दें या ये जमीर राजे कर दें मिल्कियत की तरफ। वला वजह इला इस बात ही बिल बैई, और कोई वजह नहीं है कि मिल्कियत को साबित कर दिया जाए बैअ के जरिए। साहिबैन तो क्या फरमाते थे कि जब एक शरीक ने दूसरे को इजाजत दे दी है तो जब वो बांदी को खरीदेगा तो वो अकेला ही सारी बांदी का मालिक हो जाएगा। तो इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, खरीदने से सारी बांदी की मिल्कियत उसी के लिए साबित हो जाए ये मुख्तज़ा मुफावजा के खिलाफ है। दोनों ने आपस में अकद मुफावजा किया हुआ है और इसको ये दोनों बदल नहीं सकते, लिहाजा जो भी चीज खरीदेंगे वो दोनों के दरमियान मुश्तरका होगी। तो लिहाजा बैअ के जरिए सारी मिल्कियत एक ही शरीक के लिए साबित नहीं की जा सकती, यह माना है। वला वजह इला इस बात ही बिल बैई, और कोई वजह नहीं है कि बैअ के जरिए इस मिल्कियत को साबित किया जाए। तर्जमा समझ में आ रहा है, अब जरा इबारत पे नजर रखना। वला वजह इला इस बात ही बिल बैई, बैअ का क्या माना है, बेचना, और दोनों में से एक शरीक ने बांदी को खरीदा है तो साहिब हिदाया को कहना चाहिए था कि खरीदने से सारी मिल्कियत उसके लिए साबित नहीं हो सकती, लेकिन साहिब हिदाया बैअ को जिक्र फरमा रहे हैं, बैअ के जरिए सारी बांदी की मिल्कियत एक के लिए साबित नहीं हो सकती। भाई इधर देखिए, जैद और अमर में अक़्द शिरकत हुआ है और अमर ने जैद से कहा कि तुम एक बांदी खरीद लो और फिर तुम उसके साथ वती कर लेना, तो अमर ने जैद को इजाजत दे दी और जैद ने फिर एक बांदी खरीदी। अब मुझे बताइए, जैद ने शिरा वाला फेल किया है या बैअ वाला फेल किया है? जाहिर सी बात है, जैद ने बांदी खरीदी है तो जैद ने शिरा वाला फेल किया है और जो बांदी का पुराना मालिक था उसने बैअ वाला फेल किया, तवज्जो है। तो इस शरीक का फेल तो शिरा है बैअ नहीं, लेकिन साहिब हिदाया क्या फरमा रहे हैं, वला वजह इला इस बात ही बिल बैई, और कोई वजह नहीं है कि इस मिल्कियत को साबित किया जाए बिल बैई, किसके जरिए, बैअ के जरिए। हालांकि साहिब हिदाया को क्या कहना चाहिए था, शिरा के जरिए, जैद ने बांदी खरीदी है तो शिरा के जरिए सारी बांदी का मालिक जैद बन जाए, इसकी कोई वजह नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर शरीक ने शिरा वाला फेल किया है लेकिन साहिब हिदाया बैअ का लफ्ज जिक्र फरमा रहे हैं। तो बाद शारहीन फिर फरमाते हैं कि यह जो आकद हुआ शरीक और बांदी के पुराने मालिक के दरमियान, शरीक की तरफ से देखें तो यह शिरा है और उस बांदी के पुराने मालिक की तरफ से देखें तो यह बैअ है, तो इस एतबार से इसको साहिब हिदाया ने बैअ कह दिया। यह जो बैअ की है बांदी के मालिक ने शरीक के साथ, भाई बात समझ में आ गई। लेकिन एक और जवाब भी दिया जा सकता है यहां, और वो ये कि आप पढ़ चुके हैं कि यह बैअ और शिरा अज़दाद में से हैं। अज़दाद वो अल्फाज जिनके मुतजाद मानी होते हैं, एक ही लफ्ज का माना सर्दी भी हो और गर्मी भी हो तो इसको कहेंगे ये लफ्ज अज़दाद में से है, एक ही लफ्ज का माना सुबह भी हो और शाम भी हो तो हम कहेंगे ये लफ्ज अज़दाद में से है। इसी तरह ये जो बैअ और शिरा हैं ये अज़दाद में से हैं। बैअ का माना बेचना भी और खरीदना भी, अलबत्ता बैअ ज्यादातर इस्तेमाल जो है बेचने में होता है लेकिन इसका माना खरीदने के भी है। इसी तरह शिरा जो है वो भी अज़दाद में से है, उसका माना भी खरीदने के भी और बेचने की भी, अलबत्ता वो ज्यादातर खरीदने में इस्तेमाल होता है। साहिब हिदाया की फसीह बलीग इबारात चल रही हैं, तो यहां साहिब हिदाया ने जो बै का लफ्ज जिक्र किया उस बै से शिरा मुराद है, क्योंकि दोनों शरीकों में से एक ने क्या किया है, बांदी को खरीदा है। बै बोलकर यहां शिरा मुराद है, क्योंकि बै का एक माना शिरा भी है भाई। तो यह माना है वला वजह इला इस बात ही बिल बै, और कोई वजह नहीं है कि इस मिल्कियत को साबित किया जाए बिल बै ऐ बी शिरा, यानी खरीदने के जरिए। बात समझ में आ गई। या एक और भी जवाब दिया जा सकता है, साहिब हिदाया की फसीह बलीग इबारात है भाई। भाई देखिए यहां पर अमर ने जैद को इजाजत दी है कि तुम एक बांदी खरीद कर उसके साथ सोहबत कर सकते हो, तो अब यहां इमाम साहब के नजदीक जब बांदी खरीदेंगे तो दोनों के दरमियान मुश्तरका है, और फिर उस शिरा के बाद अमर की तरफ से जिमनन हिबा मान लिया जाएगा कि अमर ने अपना हिस्सा हिबा कर दिया, तो हिबा के जरिए ही जैद फिर सारी बांदी का मालिक बन सकता है। हिबा के अलावा और कोई सूरत नहीं है कि जैद सारी बांदी का मालिक बन जाए। मसलन अगर अमर जो है अपना हिस्सा जैद को हिबा नहीं करता, बल्कि अमर अपना निस्वे हिस्सा जैद को बेच देता है, अमर अपने हिस्से की बैअ कर देता है जैद के साथ, तवज्जो है, फिर सूरत सुनो। जैद ने एक बांदी खरीद ली, यह बांदी जैद और अमर दोनों में मुश्तरका है, निस्व हिस्से का मालिक जैद, निस्व का मालिक अमर, और अमर क्या चाहता है कि जैद सारी बांदी का मालिक बन जाए ताकि उसके लिए सोहबत जायज हो जाए। तो अगर अमर अपना निस्फ हिस्सा जैद के हाथ बेच देता है, फिर भी जैद के लिए वती हलाल नहीं, फिर भी जैद के लिए वती हलाल नहीं, क्योंकि जैद जब बांदी के बकिया निस्फ हिस्से को अमर से खरीदेगा तो दोनों में आकदे मुफावजा है, और उसमें यह तय था कि जो भी चीज खरीदेंगे वो दोनों में मुश्तरका होगी। तो जब जैद अमर का निसफ हिस्सा उसे खरीदेगा तो इस निसफ हिस्से में फिर दोनों की शिरकत हो जाएगी। तो अमर अगर अपना हिस्सा जैद के हाथ बेच भी दे, फिर भी जैद के लिए बांदी से सोहबत जायज नहीं होती। तो लिहाजा यहां जैद के लिए अगर पूरी मिल्कियत साबित करनी है तो वो बै के जरिए साबित हो ही नहीं सकती, बै के जरिए साबित हो ही नहीं सकती। कौन सी बै मुराद है? अमर का अपना हिस्सा बेचना जैद के हाथ। तो अगर अमर अपना निसफ हिस्सा जैद को बेच भी दे, फिर भी जैद पूरी बांदी का मालिक नहीं और उसके लिए वती हलाल नहीं होती। तो यह माना है वला वजह इला इस बात ही बिल बै, और बै के जरिए मिल्कियत साबित करने की कोई सूरत नहीं है, क्योंकि बै कर भी लें फिर भी उसमें दोनों की शिरकत रहेगी भाई। तो लिहाजा यहां हिबा ही को मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो एक सूरत में हमने बै से मुराद वो वाली बै मुराद ली, वो जो शरीक ने बांदी को खरीदा था बांदी के पुराने मालिक से, और दूसरी सूरत में इस बै से वो बै मुराद ले लें कि अगर दूसरा शरीक अपना हिस्सा इस शरीक के हाथ बेच दे। सूरत भी समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहते हैं वला वजह इला इस बात ही बिल बै, और कोई वजह नहीं है कि मिल्कियत को बै के जरिए साबित किया जाए। लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि अन्नहु युखालिफु मुक्तज़ा शिरकति, कि ये मुक्तज़ा शिरकत के मुखालिफ है, क्योंकि दोनों में शिरकत है मुफावजा है, और वह तकाजा करता है कि जो भी चीज खरीदेंगे जितना हिस्सा भी खरीदेंगे दोनों के दरमियान मुश्तरका होगा भाई। فَأَثْبَتْنَاهُ بِالْهِبَةِ السَّابِتَةِ فِي ضِمْنِ الْإِذْنِ, लिहाजा हमने मिल्कियत को साबित कर दिया बिल हिबती, उस हिबा के जरिए, السَّابِتَةِ فِي ضِمْنِ الْإِذْنِ, जो इजाजत के जिमन में साबित है। जब एक ने दूसरे को इजाजत दे दी थी कि बांदी खरीद कर तुम मुझसे वती कर सकते हो, तो उस इजाजत के जिमन में हिबा आ गया, गोया उसने यूं कहा कि एक बांदी खरीदो और फिर उसमें मेरा हिस्सा भी मेरी तरफ से तुम्हें हिबा है, और फिर तुम पूरी बांदी के मालिक बन जाओगे और तुम फिर उसके साथ सोहबत कर लेना। बात समझ में आ गई। तो यह माना है फअसबतना हुबिल ही बते साबितति फी ज़िम्निल इज़्नी, तो लिहाजा हमने इस मिल्कियत को साबित किया उस हिबा के जरिए जो इजाजत के जिमन में साबित है। बिखिलाफ तआमी वल किस्वती, भाई इधर देखिए, साहिबैन ने इस बांदी के खरीदने को कियास किया था कपड़ों और गल्ले के खरीदने पर, और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि आकदे मुफावजा के अंदर दोनों शरीक जो भी चीज खरीदते हैं उसमें दोनों शरीक होते हैं, हां अपने घर वालों के गल्ले और कपड़ों में ये शरीक नहीं होते। इन दोनों में से जो भी अपने घर वालों के लिए गल्ला खरीदता है या अपने और अपने घर वालों के लिए कपड़े खरीदता है तो वो उसी के लिए है, और अदायगी तो वो माले मुश्तरका से कर रहा है, लिहाजा उसमें फिर उसका साथी निस्वे समन में उस पर रुजू करेगा। तो साहिबैन फरमाते थे जैसे अपने घर वालों के लिए गल्ला और कपड़े खरीदे तो खरीदने वाला ही उसका मालिक होता है, उसमें दोनों की शिरकत नहीं होती। इसी तरह जब एक शरीक ने दूसरे को इजाजत दे दी तो जब बांदी खरीदेगा तो उस बांदी में भी शिरकत नहीं होगी। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि वहां पर वो जो गल्ला और कपड़े की खरीदारी है उसमें जो शिरकत नहीं होती वो जरूरत की वजह से है, क्योंकि हर इंसान खाने पीने और कपड़ों का मोहताज है, तो जरूरत और हाजत की वजह से ये कपड़ों और गल्ले का इस्तिस्ना कर दिया गया कि अपने घर वालों के लिए जो गल्ला और कपड़े खरीदेगा उसमें शिरकत नहीं होगी, तो उसको शिरकत से मुस्तस्ना करार दिया गया जरूरत की वजह से, और यहां बांदी के अंदर तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि उसको मुस्तस्ना करार दिया जाए। बात समझ में आ गई, लिहाजा बांदी को जब खरीदेंगे तो वो दोनों के दरमियान मुश्तरका ही होगी। भाई तो कहते हैं बिखिलाफ इत्ताम इवल किस्वती, बखिलाफ गल्ले और कपड़ों के, लिअन नजालिका मुस्तस्ना नान हाल जरूरती, इसलिए क्योंकि ये तो शिरकत से मुस्तस्ना है जरूरत की वजह से, फयाकउल मिल्क लहू खास सतन, तो इनके अंदर मिल्कियत जो है उस खरीदने वाले के लिए ही खास तौर पर साबित होगी, बिनफ्सिल अक्दी नफ्से अकद यानी बै के जरिए ही। इधर देखिए, दो आदमियों ने आपस में अक्दे शिरकत किया हुआ है, जैद अपने घर वालों के लिए गल्ला खरीदता है या अपने और घर वालों के लिए कपड़े खरीदता है, तो बै के वक्त से ही ये जैद इस सारे का मालिक होगा क्योंकि ये मुस्तस्ना है। भाई ये माना है फयकउल मिल्क लहू खास सतन, तो मिल्कियत खास तौर पर उस खरीदने वाले के लिए ही साबित होगी, यानी इस गल्ले और कपड़ों में, भी नफ्सिल अक्दी नफ्से अकद यानी बै के जरिए ही, जैसे ही ये खरीदेगा तो इसी के लिए मिल्कियत साबित होगी, बाद में हिबा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। भाई तो इसी के लिए मिल्कियत साबित होगी नफ्से अकद से ही, वकान मुअद्दियन दैनन अलैहि मिन माल शिरकती। इधर देखिए, जब अपने घर वालों का गल्ला और कपड़े वो शिरकत से मुस्तस्ना हैं, लिहाजा जब अपने घर वालों के लिए गल्ला और कपड़े खरीदेगा तो माल के अंदर तो दोनों की शिरकत है सारे माल में, तो जब ये माल के जरिए अदायगी करेगा तो अदायगी तो माल मुश्तरका से कर रहा है, लिहाजा इस वजह से दूसरा शरीक इस पर निसफ के अंदर रुजू करेगा, जबकि बांदी को जब खरीदा था तो बांदी तो मुश्तरका थी लेकिन दूसरे ने अपना हिस्सा हिबा कर दिया, अब वो निसफ में रुजू नहीं कर सकता। भाई तो कहते हैं वकान मुअद्दियन दैनन अलैही, और ये खरीदने वाला अदा करने वाला हो गया उस दैन को जो इसके ऊपर था, मिम माल शिरकत, माल शिरकत में से, अपने लिए अपने घर वालों के लिए कपड़ा खरीदा है और माल मुश्तरका से अदायगी कर रहा है तो दूसरा साथी बाद में इस पर रुजू करेगा। तो यह माना है वकान मुअद्दियन दैनन अलैहि मिन माल शिरकती, तो यह शख्स वो दैन जो इसके ऊपर था उसको अदा करने वाला हो गया माल शिरकत में से, वफी मसअलतिना, और जबकि हमारे मसले में यानी बांदी के मसले में, कजा दैनन अलैहिमा, कि इसने जो दैन अदा किया है वो दोनों पर था, बांदी तो दोनों में मुश्तरका थी तो लिहाजा कीमत जब अदा कर रहा है तो ये दैन एक पर था या दोनों पर था, दोनों पर था तो लिहाजा इस वजह से इसका साथी इस पर रुजू नहीं करेगा। तो कहते हैं वफी मसअलतिना, और हमारे मसले के अंदर, कजा दैनन अलैहिमा, कि ये इसने ऐसा दैन अदा किया है जो दोनों पर था, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि ये बांदी मुश्तरका थी दोनों की, वलिल बाई अय्याहुजा बिसमनी। अब यहां से ये बतला रहे हैं, एक शरीक ने दूसरे शरीक को इजाजत दी कि एक बांदी खरीद कर तुम उससे वती कर सकते हो, उसने बांदी खरीदी और उसे वती कर ली, तो अब बाई क्या इसी से समन का मुतालबा करेगा जिसने बांदी खरीदी है या इसके शरीक से भी समन का मुतालबा कर सकता है? तो जवाब देंगे कि हम आपको पहले बता चुके अक़्दे मुफावजा के अंदर दोनों एक दूसरे के कफील भी होते हैं, तो दोनों से इस समन का मुतालबा हो सकता है। भाई तवज्जो है, बांदी का मालिक दोनों से बांदी के समन का मुतालबा कर सकता है। तो कहते हैं वलील बाई, और उस बांदी के बेचने वाले के लिए जायज है खुजा बिस्सा मनी के वो समन ले ले इन दोनों में से जिससे भी चाहे बिल इत्तेफाक। भाई यानी हमारे तीनों अइमा के नजदीक समन का मुतालबा दोनों से हो सकता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलील बा खुजा बिस्सा मनी अयुमा शाह अबिल इत्तेफाकी, और कहते हैं बिल इत्तेफाक बाय के लिए जायज है कि वो समन ले ले इन दोनों में से जिससे चाहे ले अन्नहू दैनू व जब अभी सबब तिजारती, इसलिए क्योंकि ये ऐसा दैन है जो तिजारत की वजह से वाजिब हुआ है। ऐसा देन है जो तिजारत की वजह से वाजिब हुआ है, भाई बांदी को खरीदा है, और तिजारत में भी क्या होती है? बेउ शिरा होती है। तो ये देन जो बांदी के समन आए हैं ये तिजारत की वजह से आए हैं। भाई तो कहते हैं लिअन नहु देनू व जब अभी सब अभी तिजारती, इसलिए क्योंकि ये जो बांदी के समन है ये ऐसा देन है जो तिजारत की वजह से वाजिब हुआ है। वल मुफावजत तजम्मनतिल कफालता, और शिरकत मुफावजा जो है वो कफालत को मुतजमिन होती है, दोनों शरीक एक दूसरे के कफील होते हैं यानी जामिन होते हैं, दोनों से मुतालबा हो सकता है। फसारक ताम वल किस्वती, तो ये ताम और किस्वा की तरह हो गए। ताम और किस्वा दोनों में से एक खरीदता था अपने घर वालों के लिए, लेकिन फिर भी मुतालबा दोनों से हो सकता था, यहां पर भी दोनों से मुतालबा हो सकता है। तो यह माना है फसारा का ताम वल किस्वती, तो यह बांदी भी गल्ले और कपड़ों की तरह हो गई, जैसे उनके समन का मुतालबा दोनों से हो सकता है, इस बांदी के समन का मुतालबा भी दोनों से हो सकता है। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस, बेहादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।